सभा को शुभ प्रातः। आइए अब हम अपने प्रभु से बातें करें। महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की रचयिता, जिसने पवित्र व्यवस्था में होकर हमें आज प्रातः अपनी आराधना के लिए ठहराया, और होने दे प्रभु कि हम अपने संपूर्ण हृदय से अपने को तुझे तेरी दिव्य इच्छा में समर्पित कर दें, और अपने पवित्र आत्मा का कार्य जो तू हम में कर रहा है उससे उन बातों को जो तू हमें सिखाना चाहता है उभार दे। हमारी इच्छा है कि हम अच्छे मसीही और आपके अच्छे प्रतिनिधि बने। जब हम आप पर निर्भर करते हैं तो आप क्या हमारी इस प्रातः की प्रार्थना ग्रहण करेंगे? यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम यहाँ आज प्रातः फिर से बहुत प्रसन्न हैं महान राजा की सेवा में। हमें खेद है कि फिर से हमारे पास लोगों के लिए स्थान नहीं है, परंतु फिर भी हम यत्न करेंगे कि इन परिस्थितियों में आपके लिए अच्छा से अच्छा करें। अब बहुत से रुमाल और निवेदन यहाँ प्रार्थना के लिए रखे हैं, और मैंने उन्हें एक और रख दिया है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ, परंतु बाद में मैं प्रार्थना करूँगा, पहले विशेष और आज रात चाहता हूँ। आज प्रातः भी करूंगा, तब रात को फिर से, तब मैं प्रार्थना करूंगा और चंगाई के लिए परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहूंगा, और तब ही इन रुमालों और चीजों पर प्रार्थना करना चाहूंगा। और विशेष निवेदन पर ही बिली ने ये सब मुझे दिए हैं, ये लगभग 300 हैं। तब मैंने वो स्थान छोड़ा, देखिए वहाँ इतने सारे रुमाल तेजी से आ रहे थे जितने मेरे पास आ सकते थे, और मैं उनको जितनी जल्दी हो सके लूंगा। शायद मैं उन सबको ना ले सकूंगा कि उनमें से मैं एक एक रुमाल को लेकर कहूं कि प्रभु ऐसा ही करेंगे, क्या आप इसके साथ ऐसा हो तो, क्योंकि ये सच्चे निवेदन है और हर कोई इसमें अति आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि हमें आपस में कुछ बातें करनी है, और मैं जब तक आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कभी कभी वही पढ़ने को कहता है जो आपके हृदय में है, तब मैं वापस जाकर उसी को तब तक ढूंढता हूँ जब तक पानी लेता, नहीं तो मैं उसको ऐसे ही लेता हूँ। अब आज प्रातः मैं उनको जो देश के दूसरे भागों में है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम उनको भी जो टेलीफोन द्वारा सुन रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जो न्यूयॉर्क शहर, बे माउंट, टेक्सास, प्रेस्कोट, एरिजोना, ट्यूसान एरिजोना में, सैन जोस कैलिफोर्निया, कैंटिकट, जेनसेविल जॉर्जिया और न्यू एल्बनी इंडियाना और पूरे देश में। हम उनको प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज प्रातः इंडियाना में सुहानी प्रातः है, कल रात वर्षा हुई थी जिससे मौसम ठंडा हो गया, और हम आराधनालय में पूरी तौर से भरा हुआ है, और हर कोई संडे स्कूल के पाठ के लिए आशावान है, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की महान आशीषें हम पर और सबों पर होंगी। हम इस बात की संभावना की आशा करते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल सकेगा कि हम एक साथ एक स्थान में जमा हो सकेंगे। हो सकता है किसी बड़े तंबू के नीचे, जहां मुझे सही में बाइबल के साथ अंतिम कटोरों को प्रचार करने का मन हो रहा है। इसलिए हम आज की प्रातः बहुत लंबे समय तक इस महान पाठ पर नहीं रहेंगे। मैंने विचारों में प्रभु से पूछा कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये जानते हुए कि ये हमारी अंतिम सभा होगी जो कि शायद फिर कभी ना हो। प्रभु का आना तो बहुत ही पास है। मैं देखता हूँ जब से कैलिफोर्निया में भविष्यवाणी हुई, वहाँ के घर और जगहें 30 इंच प्रति घंटे के हिसाब से धस रहे हैं, लट्ठे चटक चटक कर टूट रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हम समाप्ति पर खड़े हैं, लाखों डॉलर के घर धस रहे हैं। मैंने अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों और तस्वीरों में आशा करता हूँ आज रात हम लाए हैं, जैसा कि मैं इस विषय पर आज रात बोलना चाहता हूँ, और फिर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। दोपहर बाद 5-6 बजे आइए, या जैसे भी हो, हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं मैं समझता हूँ, ताकि लोग जल्द जा सकें और अपने प्रार्थना पत्र ले लें, और यदि प्रभु ने चाहा तो आज रात हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब बहुत प्रार्थना के बाद सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये जानते हुए कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ एक दिन मुझे उस सब का उत्तर देना होगा। और मैंने ये निर्णय किया था पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज प्रातः उस भविष्यवाणी पर जो कि सूचना के तौर पर है बोलूं। देखिए, ये वो बात है जो कि हम यदि हमें ना पता लगे और कुछ भी साधारणता हो जाए तो उसके विषय में हमें मालूम होना चाहिए। पवित्र आत्मा ने हमें ये दिया है कि लोगों को आने वाली बात से चेता दें। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर जब तक अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बताता तब तक कुछ नहीं करता। क्या होने वाला है इसके लिए यीशु ने लोगों को कैसे चेताया? ये होने वाला है इसके लिए भविष्यद्वक्ताओं ने लोगों को कैसे चेताया? और इस महान समय में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम देखें कि हम किस युग में रह रहे हैं और क्या हो रहा है और इस युग में क्या होने जा रहा है। इसलिए ऐसा एक अजीब विषय जिसको शायद हमने कई बार पढ़ा है, ये मेरे हृदय में था कि आज प्रातः इस विषय पर बोलूं। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र में मत्ती 24 निकाल लें और वचन का एक भाग पढ़ें। मुझे क्षमा करें, अपने प्रसंग पर जाते हुए अपने मूल पाठ और विषय। अब ध्यान रखें कि हम इसको बाइबल कक्षा की तरह पढ़ाएंगे धीरे धीरे। मेरे पास यहाँ बहुत सी आयतें लिखी हैं, इसलिए अपनी पेंसिल और कागज ले लें ताकि आप इन बातों को लिख लें, तब घर जाकर इनका अध्ययन करें, क्योंकि ये संडे स्कूल की कक्षा की तरह है, ताकि हम जान सकें और चेत जाएं और जिस समय में रह रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाएं। संत मत्ती की पुस्तक में, मुझे क्षमा करें, 24वें पद या 24वें अध्याय की बल्कि 15वीं आयत से आरंभ करके मैं उसके वचन का भाग पढ़ना चाहता हूँ।
Then let them which are in Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return.
So, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वो समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर में सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ है वहीं उकाब इकट्ठे होंगे। अब 24वें पद को मैं अपने विषय के लिए लेना चाहूंगा और आज प्रातः संडे स्कूल पाठ के लिए इसी पर ध्यान करेंगे। और अब ध्यान पूर्वक सुने जब मैं इसे फिर पढ़ता हूँ। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अब आज प्रातः अपने विषय या मूल पाठ, बल्कि मैं चाहूंगा कि अंत समय के अभिषिक्त लूं। यही विषय या मूल पाठ है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं। अंत समय के अभिषिक्त लोग, मैं विश्वास करता हूं कि हम अंत समय में रह रहे हैं। मैं सोचता हूं बहुत से जो पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले या विश्वासी भी जानते हैं कि हम विश्व इतिहास के अंतिम भाग में रह रहे हैं। इसके लिखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला कोई और नहीं होगा। ये समय का अंत है, जबकि मैं नहीं जानता कि कितने समय तक ये सब चलेगा। ये तो स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते कि ये कौन सी घड़ी या कौन सा घंटा होगा। परंतु हमें प्रभु यीशु के द्वारा बताया गया है कि जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा पास ही है। अब निकट होने का क्या अर्थ है, ये मैं नहीं जानता। अर्थ हो सकता है, जैसा कि उस दिन एक वैज्ञानिक टेलीविजन पर बता रहा था, कि पृथ्वी में हजारों मील की दरार बन गई है और ये धंसने जा रही है। उससे प्रश्न किया गया, क्या ये वहाँ से धंस सकती है जो कि लॉस एंजलिस पश्चिम में है। आप में से बहुत सो ने देखा है कि वो कैसे रडार से नजर रखे हैं, और ये पार चली गई है, सेंट जोस के नीचे से होकर ऊपर अलास्का तक गई है, वहाँ से होकर एलुटीन टापू की ओर जो कि सागर में 200 मील दूर है, और फिर वापस सेंट डिगाओ की ओर आकर लॉस एंजलिस के पीछे की ओर घूमकर एक बड़ा थैलानुमा है। और जितने भूकंप आते हैं, ये सब ज्वालामुखी के झटकों से एक बड़ा गहरा खोखला जैसा बना रहे हैं। मैं उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ जो वो लोग इसे कहते हैं। जैसे भी हो, जब वो हिलता है तो भूकंप आते हैं। हम यहाँ पश्चिम किनारे पर वर्षों से हैं। अब ये चारों ओर दरार के घेरे में है, और वैज्ञानिकों ने कहा है, एक उस व्यक्ति ने दूसरे से कहा, ये तो नीचे जा सकता है। उसने कहा, जा सकेगा नहीं, परंतु ये तो जाएगा ही। कहा कि परंतु शायद हमारे समय में नहीं। उसने कहा, अगले 5 मिनट में या अगले 5 वर्षों में, हम नहीं जानते कि कब। इस सप्ताह मुझे अखबार के विशेष पंक्तियां भेजी गईं कि हजारों डॉलर के घर टूटते जा रहे हैं और लोग वहां से हट रहे हैं, और वे नहीं जानते कि इसे कैसे रोका जाए। इसको रोकने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, उसे ये कोई नहीं समझा सकता कि कैसे करना है। आप घर बनाते हैं, आप वैज्ञानिक वस्तुएं बना सकते हैं, और परमेश्वर ही विज्ञान का रचने वाला है। आप उसे कैसे रोक सकते हैं? यदि वो चाहे तो इस संसार को आज प्रातः पिस्सों से ही नष्ट कर दे। आप ये समझते हैं, वो यदि बोले पिस्सू प्रकट हो जाए, वो हो सकता है 40 मील गहरे में हो और आधे घंटे के समय में। देखिए, अभी कुछ नहीं है और वो धरती में से निकलकर लोगों को खाने लगेंगे। वो परमेश्वर है, वो जैसा चाहे कर सकता है, वो अपने में सर्वोच्च है। इन सब प्रमाणों को जुटाने के बाद हम देखते हैं कि जिस घड़ी में अब हम रह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि ये अच्छा है कि हम इन सब बातों को दोहरा लें और उन सब बातों को का नक्शा खींच लें। जब से मोहरें खुली हैं, हमने इन बातों की सच्चाई जान ली है। जैसा कि परमेश्वर हमारे प्रति ईमानदार है, अपने अनुग्रह से उसने हमें ये चीजें दिखाई हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां मत्ती 24 पर ध्यान दें कि यीशु ने एक से अधिक मसीह शब्द प्रयोग किया है, CHRISTS, एक मसीह नहीं, एक से अधिक मसीह, एक वचन नहीं, बहुवचन मसीह। इसलिए मसीही शब्द का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ। और अब यदि अभिषिक्त किया तो यहाँ केवल एक नहीं होगा, परंतु बहुत से अभिषिक्त किए हुए, समझे? नहीं तो यदि वो चाहता कि इसे और सरल करें ताकि हम इसे और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, तो वो कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे अभिषिक्त उठ खड़े होंगे। अब ये तो बिल्कुल ही असंभव लगता है। देखिए, शब्द अभिषिक्त किए हुए,
and false prophets.
परंतु अगले शब्दों पर ध्यान दें, झूठे भविष्यवक्ता, बहुवचन। अब अभिषिक्त किया हुआ वो जो संदेश के साथ है, और एक ही साधन है कि संदेश लाया जाए, और वो किसी अभिषिक्त के द्वारा, और वो अभिषिक्त भविष्यवक्ता होगा। बहुत से झूठे अभिषिक्त सिखाने वाले उठ खड़े होंगे। एक भविष्यवक्ता सिखाता है कि उसका संदेश क्या है। अभिषिक्त सिखाने वाला, परंतु अभिषिक्त लोग झूठी शिक्षा के साथ, अभिषिक्त किए मसीह बहुवचन, अभिषिक्त किए भविष्यवक्ता बहुवचन। यदि कोई एक वचन मसीह है, तो ये सारे अभिषिक्त किए हुए लोग होंगे कि उनकी भविष्यवाणी जो कुछ भी वो सिखा रहे हैं वो भिन्न होगा, क्योंकि वे लोग अभिषिक्त किए हुए लोग अभिषिक्त हैं। ये तो हमारे संडे स्कूल का पाठ है। हम इसकी सच्चाई को पाने का प्रयत्न करेंगे, पवित्र शास्त्र के द्वारा मालूम करेंगे, न कि किसने इस विषय में क्या बताया है, केवल वचन पढ़कर देखेंगे। आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है, अभिषिक्त होंगे, ये क्या थे? मसीही, CHRISTS, अभिषिक्त किए हुए मसीह, और झूठे भविष्यवक्ता। अभिषिक्त किए तो हैं, परंतु झूठे भविष्यवक्ता। यीशु ने कहा कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर होती है। अब कोई मुझसे ये कह सकता है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि उन लोगों पर अभिषेक का अर्थ है कि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है? जी हाँ श्रीमान, सही, ठीक, पवित्र आत्मा परमेश्वर का व्यक्तियों पर, और फिर भी वे झूठे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहा गया है, और वो चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनियों को भी भरमा दें। और वो सही पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। मैं जानता हूँ कि ये मूर्खतापूर्ण लगता है, परंतु हम समय देकर वचन से इसकी व्याख्या करेंगे कि परमेश्वर ये कहता है वाला सत्य है। आइए एक मिनट के लिए अपनी बाइबल में मत्ती का 5वां अध्याय और 45वें पद से आरंभ करें, और जब हम क्षण भर के लिए पढ़ते हैं तो वचन को देखें। आपके यहाँ से जाने के बाद इसलिए ये हम आपको देंगे। इसलिए यदि आप सब ना पढ़ सकें तो अपनी बाइबल लेकर घर जाने के बाद पढ़ लें, और इस विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है वो पढ़ें। अब हम समय होते अपने मूल तथ्यों तक पहुँचे, क्योंकि मैं यहाँ चकित करने वाला बयान दे रहा हूँ। कैसे पवित्र आत्मा झूठे गुरु को अभिषिक्त कर सकती है? लेकिन यही यीशु ने कहा है जो होगा। अब आइए हम मत्ती का 5वां अध्याय और 45वां पद पढ़ें। हम इसको थोड़ा पीछे 44वें पद से पढ़ें। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। अब इसके साथ साथ हम दूसरी भविष्यवाणी को, जो इसी से संबंधित है, इब्रानी के 6वें अध्याय में देखेंगे। अगले चरण के लिए इस पद में पौलुस उसी बात को ध्यान दिलाता है जो यीशु ने कहा है। अब पौलुस बोल रहा है, जब तक आप इसे ढूंढें और आप बाहर के लोग जो रेडियो से सुन रहे हैं अपनी बाइबल और कागज लेकर तब तक यहाँ सुने। इब्रानी 6वां अध्याय पौलुस हिब्रू लोगों को लिख रहा है, उनको छाया और नमूने दिखा रहा है, उनको यहूदी मत से मसीहत में ला रहा है, उनको बता रहा है कि किस प्रकार से पुरानी चीजें केवल आने वाली बातों की छाया थी। अब पौलुस इब्रानी 6 में बोल रहा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर मसीह एक वचन हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, हम इन बातों की नेव फिर से न डालें, प्रायश्चित मरे हुए काम और परमेश्वर पे विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने और मृतकों के जी उठने और अंतिम न्याय, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। एक मिनट के लिए मैं आपका ध्यान यहाँ चाहता हूँ, क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ वरदान है, वरदानों नहीं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, परंतु स्वर्गीय वरदान एक वचन, मसीह एक वचन, वरदान एक वचन, स्वर्गीय वरदान और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके हैं। किसका स्वाद? परमेश्वर के वचन का और आने वाली युग की सामर्थ। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि ध्यान से सुने, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का सागपात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो वो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अब इसकी तुलना मत्ती 5:24 से फिर करें। ध्यान दें, यीशु ने कहा कि वर्षा और सूर्य धरती पर आते हैं जिनको प्रभु भोजन तैयार करने के लिए और पृथ्वी के लोगों के लिए चीजें तैयार करने के लिए भेजता है, और वर्षा भोजन और सागपात उपजाने को भेजी जाती है, परंतु ऊंट कटारे और झाड़ियां जो मैदान में होती हैं, वही वर्षा ग्रहण करती हैं, वही वर्षा जिससे गेहूं बढ़ता है, वही वर्षा ऊंट कटारे उपजाती है। मैंने ये पाठ एक बार जब मैं पहली बार पेंतिकोस्तल लोगों से मिला वहीं सीखा, और ये मेरे लिए एक बड़ी शिक्षा थी। मैंने दो व्यक्ति देखे, एक पहले मैंने कभी अन्य भाषा नहीं सुनी थी, एक अन्य भाषा बोलता था तो दूसरा अनुवाद करता था ऐसे ही दूसरी ओर से। और मैं इस बात को सत्य में कहना चाहूँगा, कहूँ तो आज रात यहाँ बहुत से हैं जिन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, पुरुष और स्त्री दोनों ही हैं, और लोग उठते और ऑल्टर पे जाते हैं। मैंने सोचा कितना बढ़िया है, और मैं अपने पवित्र आत्मा के छोटे से वरदान के साथ उन व्यक्तियों से मिला, जैसे कि आप जानते हैं कि हृदय के विचारों के परखने का साधन है, और उनमें से एक सच्चा मसीही था, वो मसीह का सच्चा सेवक था, और दूसरा ढोंगी था, और दूसरा वाला जो ढोंगी था वो काले बाल वाली स्त्री के साथ रह रहा था और उसके साथ इधर उधर आराम से घूमता था और उससे बच्चे भी थे। भाई ये तो दर्शन में साफ दिखा, जिसको कि झुटलाया नहीं जा सकता। मैंने इस बारे में उससे बात की, उसने मेरी ओर देखा और इमारत की दूसरी ओर चल दिया। अब मैं सच में बहुत ही दुविधा में पड़ गया। मैंने सोचा था कि मैं दूतों के बीच में हूँ, फिर मुझे आश्चर्य हुआ कहीं मैं शैतानों के बीच में तो नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं समझ सका। और वर्षों तक मैं इसके बारे में शांत रहा, जब तक कि एक दिन जहाँ वो लड़का जॉर्ज स्मिथ जो मेरी बेटी के साथ जाता है, हम कल वही पुराने मिल वाले स्थान पर गए जहाँ मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, और कुछ ही दिन पहले जब मैं वहाँ था तो पवित्र आत्मा वही वचन मेरे सामने ले आया, जब वर्षा भूमि पर बार बार पड़ती है और सागपात उपजाती है, परंतु ऊंट कटारे उसी वर्षा से ही उगते हैं जिसका अंत जलाया जाना है। वो परमेश्वर के उसी जीवन स्रोत से जीवन जीवित रहते हैं। तब मैं ये समझ गया, यीशु ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब जबकि वर्षा पृथ्वी की प्राकृतिक साग पात पर गिरती है, ये आत्मिक वर्षा की छाया है। जब वो कलीसिया पर गिरती है तो अनंत जीवन देती है, जिसको हम पहली और अंतिम वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा में परमेश्वर का पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडलता है। ध्यान दें, यहाँ पर ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, जब वो बीज जमीन में चले गए, कैसे भी वो वहाँ पहुँच गए, वो आरंभ से ही ऊंट कटारे थे, परंतु वहाँ गेहूं भी भूमि में गया और साग पात भी, वो आरंभ से ही साग पात थे। और हर साग पात अपने को ही उत्पन्न करता है और ये प्रकट करता है कि वो आरंभ से सही में यही था। यदि ये हो सकता था तो वो चुने हुओं को भी भरमा देते, क्योंकि उन्हें भी वही वर्षा, वही आशीष मिल रही है, वही चिन्ह और आश्चर्य क्रम। देखा, वे चुने हुओं को धोखा दे देंगे या देते यदि ये संभव हो सकता। कांटे कांटे ही है, इसमें वे कुछ नहीं कर सकते और न ही गेहूं कुछ कर सकता है, क्योंकि वो गेहूं ही है। ये तो सृष्टिकर्ता ने जो आरंभ में ठान लिया वही है, यही चुने हुए हैं। वही एक वर्षा प्रातः का सूर्य उदय पूरी पृथ्वी पर अपना प्रकाश देता है, जैसा कि इस पृथ्वी पर है, और दिन जिसमें हम रहते हैं, और वही सूर्य जो पूर्व से उदय होता है वही पश्चिम में अस्त होता है, और सूर्य पृथ्वी पर भेजा जाता है कि इसकी उपज को पकाए, जिससे हमारा शरीर बनता है। हम मृत वस्तुओं से जीते हैं, आप जीवित रह सके इसका केवल यही उपाय है। और आपके प्राकृतिक जीवन के लिए हर रोज किसी चीज को मरना पड़ता है। क्या ये सत्य नहीं है कि आपका शरीर प्राकृतिक जीवन के लिए मृत वस्तुओं पर है? तो आपके पास कुछ होना चाहिए जो आत्मिक तौर पर मरे, कि आपका आत्मिक जीवन बचा सके। और परमेश्वर वो वस्तु शरीर हो गया और मर गया कि हम जीवित रह सकें। ना कोई गिरजा, ना संसार की कोई वस्तु आपको बचा सकती है, केवल परमेश्वर। यही एक चीज है जिससे वे जीवित हैं। अब आयतों में देखें, यीशु वचन है। आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वासा किया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी बना और जो हमारे बीच में रहा। और मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता शारीरिक रीति के लिए, परंतु प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तब आप समझ सकते हैं कि हम वचन से ही जीते हैं और वो परमेश्वर है। सूर्य निकलता है और दानों को पका देता है। अब वो उनको एकदम से नहीं पका देता, जैसे जैसे वो परिपक्व होते जाते हैं वो उन्हें निरंतर पकाता रहता है, जब तक वो पूरी तरह से बालों में ना आ जाएं। और आज ऐसा ही है कलीसिया के साथ। वो अपने अंधेरे काल में अपने छोटेपन से आरंभ हुई जब वो जमीन के अंदर थी, अब वो बढ़कर परिपक्व हो गई है, और इसको हम प्रकृति में होकर भली प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे किया। आप प्रकृति में बाधा नहीं डाल सकते। आज भी यही बात है, हम लोग समुद्र में बमों के धमाके कर रहे हैं, एटम बमों के धमाके यहाँ वहाँ कर रहे हैं। हम मट्टी की परतों को तोड़ तोड़ कर गिरा रहे हैं। आप पेड़ों को काटिए, तूफान आपको नष्ट कर देगा। नदी को रोकिए, वो ऊपर से बह निकलेगी। आपको परमेश्वर की कार्य विधियों को जानना पड़ेगा और उसी में रहना होगा। हमने लोगों को गिरजों की उपाधियों और संगठनों में बदल दिया है। देखिए हमें क्या मिला है, परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग में ही बने रहिए। अब देखिए, हम अपने विषय पर वापस आ रहे हैं। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में आपको बताते हैं कि अंत समय का यही चिन्ह होगा। अब यदि यही चिन्ह अंत समय में जाना जाएगा तो ये उन मोहरों के खुलने के बाद ही होना है, समझे? ये अंत समय का चिन्ह है। यही होगा जब ये बातें हों तो ये अंत समय में होगा। और अब यही चिन्ह होगा ताकि चुने हुए इन चीजों में ना गड़बड़ा जाए। आप देख रहे हैं ना ये? तो ये तो प्रकाश में आना ही है, प्रकट होना ही है। ध्यान दें, गेहूं और ऊंट कटारे दोनों ही उसी स्वर्गीय अभिषेक द्वारा जीवित हैं। दोनों ही इसमें आनंदित हैं। मुझे याद है कि मैंने इस घटना का उल्लेख किया था उस दिन ग्रीन मिल वाले दिन का। मैंने उस दर्शन को देखा, एक बड़ी पृथ्वी और वो बोने के लिए तैयार थी। एक बोने वाला पहले आया। मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए पहले क्या होता है, तब इसके बाद क्या होता है, और ये मनुष्य सफेद पोशाक में पृथ्वी का चक्कर लगाकर बीज बो रहा है। तब उसके पीछे काली पोशाक में, जो कि चतुर प्रतीत होता है, धीरे से उसके पीछे आकर ऊंट कटारे बो रहा है। और जब ये हो रहा था तो मैंने देखा दोनों फसलें उगाई, और जब वो उगाई तो उनमें से एक गेहूं और दूसरी झाड़ियां थीं, और सूखा पड़ा तो दोनों ऐसे लग रहे थे कि जैसे सर झुकाकर वर्षा के लिए रो रहे हों। तब पृथ्वी पर बड़ा बादल आया और वर्षा हुई। गेहूं ने सिर उठाकर कहा, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, और झाड़ी ने भी सर उठाया और चिल्लाई, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। एक ही परिणाम, दोनों ही नष्ट हो रहे थे, दोनों की एक सी दशा थी। और गेहूं उगकर आया और प्यासा हुआ, क्योंकि वे एक ही खेत में थे, एक ही वाटिका में, एक ही स्थान, एक ही फुहार के नीचे थे। गेहूं उपजा, भूसा उपजा उसी एक चीज से। ध्यान दें कि एक ही पानी के अभिषेक द्वारा गेहूं और झाड़ी उगती है। एक ही पवित्र आत्मा कलीसिया को अभिषेक करता है, उसी से उनकी इच्छा जीव बचाने की होती है। वही उनको आश्चर्य कर्म करने की शक्ति देता है। वो धर्मी और अधर्मी पर समान रूप में गिरता है, वही एक आत्मा। अब आप मत्ती 24:24 को किसी और प्रकार से नहीं समझ सकते। उसने कहा, झूठे मसीही, झूठे अभिषिक्त लोग, बिल्कुल विशुद्ध वस्तु से ही अभिषिक्त, परंतु उसी से झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और झूठे शिक्षक। किसी भी सत्य के लिए वो क्या है जो उसे झूठा शिक्षक बनाता है? अभी थोड़ी देर में हम पशु के चिन्ह पर आएंगे, तब आप देखेंगे कि ये उन नामधारियों में है। देखिए, झूठे शिक्षक, झूठे अभिषिक्त, अभिषिक्त मसीही परंतु झूठे शिक्षक, यही एक तरीका है कि आप देख सकें। जैसा कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, मैं इसका उल्लेख कर सकता हूँ क्योंकि हम पूरे राष्ट्र से रेडियो द्वारा जुड़े हुए हैं। एक दिन मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो कि आज प्रातः ही एरिजोना से आया है, और उसका एक रसेदार फलों का फार्म था, और वहाँ एक संतरे का वृक्ष था, और उस पर नींबू और चकोतरा और खट्टा आदि आदि फल लगे थे। और मैं भूल गया कि कितने और फल उसी एक पेड़ पर लगे थे। और मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा, ये कैसे है, ये किस प्रकार का पेड़ है? उसने कहा, ये पेड़ स्वयं में संतरे का पेड़ है। मैंने कहा, तो फिर इस पर चकोतरा कैसे लग रहा है, इस पर नींबू क्यों लग रहा है? उसने कहा, इनकी कलम उसमें लगाई गई है। मैंने कहा, अब समझा। तो अब मैंने कहा, जब अगले वर्ष इस पर फलों की दूसरी फसल आएगी जो कि ये सब लगभग एक ही समय में पकते हैं? मैंने कहा यदि ये अच्छे संतरे का वृक्ष है तो इस पर बढ़िया संतरे आएंगे, ऐसा ही होगा ना श्रीमान? उसने कहा नहीं श्रीमान, हर कलम लगी डाली अपने ही तरह का फल लाएगी। मैंने कहा आपका अर्थ है कि नींबू की डाली इस संतरे के वृक्ष से नींबू ही लाएगी? उसने कहा जी हाँ श्रीमान। संतरे के वृक्ष से चकोतरा, चकोतरा ही लाएगा? उसने कहा जी हाँ श्रीमान। ये तो डाली की प्रकृति है जो उसमें सांटी गई है। मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो। उसने कहा आपका क्या मतलब है? मैंने कहा एक और प्रश्न, अब इस संतरे के पेड़ पर फिर संतरे नहीं आएंगे? उसने कहा जब इसकी नई डाली आएगी, जब इसकी नई डाली आएगी जो उसमें सांटी गई है उसकी नहीं, परंतु ये सब नींबू जाति के फल हैं और ये अपने इस जीवन को जो इस पेड़ में है उससे प्राप्त करते हैं। मैंने कहा यही आप स्थित हैं। मेथोडिस्ट सदैव मेथोडिस्ट ही उत्पन्न करेगा, बैप्टिस्ट सदा बैप्टिस्ट ही उत्पन्न करेगा, कैथोलिक सदा कैथोलिक ही उत्पन्न करेगा, परंतु जीवित कलीसिया जो परमेश्वर की है वो जड़ से वचन से ही मसीह को उत्पन्न करेगी यदि इसने कभी अपनी ही डाली उत्पन्न करी। आप इसमें कलम लगा सकते हैं, समझिए, हर चकोतरा नींबू खट्टा कीनू जो कुछ भी इस नींबू जाति का है उनमें से हर एक इस पेड़ के द्वारा जीवित रह सकता है, लेकिन वृक्ष पर लगे होने के बाद भी इनकी गवाही झूठी होगी। समझे आप, वो पेड़ के सच्चे जीवन से जो उसमें है उससे जीवित हैं, फल फूल रहे हैं। मत्ती 24:24 यहाँ है, वो उसी जीवन से जीवित तो हैं, परंतु आरंभ से वो नहीं थे, वो अपने में पेड़ की झूठी गवाही रखते हैं। वो संतरे का पेड़ है फिर भी वो रसेदार फल का पेड़ है। वे कहते हैं ये गिरजा, ये नामधारी मसीह की गवाही रखते हैं और झूठे बपतिस्मे मानते हैं, वचन की झूठी गवाही, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ केवल चेलों के लिए थी। यीशु ने स्वयं कहा तुम जाओ और संसार में हर डाली को सुसमाचार प्रचार करो। पेड़ जब कभी भी कोई भी डाली लाएगा और असली डाली के ये चिन्ह होंगे, कहाँ? जब तक ये पेड़ है और जगत के अंत तक, जब तक ये पेड़ डालियां निकालेगा, मेरे नाम से ये शैतानों को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखिए हम किस समय में रह रहे हैं। देखिए यीशु ने कहा था, याद रखें, ये अंत समय के लिए था, वैसली या पीछे के लिए नहीं। अब इस अंत समय में ये होना ही था। अब बाइबल के वचनों को देखें, वही गवाही देंगे। यीशु ने कहा पवित्र शास्त्र में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते या विश्वास करते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, वही है जो मेरी गवाही देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि ये पेड़ कभी अपनी डाली लाएगा, मैं दाख लाता हूँ, पेड़ हूँ, तुम डालियां हो, वो जो मुझ पर विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, यूहन्ना 14:12। वो जो मुझ में है, वो जो आरंभ से मेरी जड़ में है, यही कारण है कि यीशु दाऊद की जड़ और संतान दोनों ही है। वो दाऊद से पहले था, दाऊद में और दाऊद के बाद, दाऊद की जड़ और संतान दोनों, भोर का तारा, शहरों का गुलाब, घाटी की लिली, अल्फा और ओमेगा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और उसके भीतर शारीरिक रूप में परमेश्वरत्व की परिपूर्णता निवास करती थी। दाऊद की जड़ और संतान दोनों, वो जो चुना जीवन है, ठहरा हुआ जीवन, जो मुझ में है वो आरंभ से ही वचन है। जब भी वो आता है मेरे ही फल उगाएगा। संत यूहन्ना 14:12। परंतु दूसरे इसी से ही जिएंगे और अपने को मसीह और विश्वासी कहेंगे। वो सब जो प्रभु प्रभु कहते हैं प्रवेश नहीं करेंगे। अब ये सब बातें अंत के दिनों में होंगी और प्रकट होंगी जब परमेश्वर के भेद खुल जाएंगे, जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक पेड़, एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता। आप पिछले वर्षों से मुझे ये प्रचार करते सुन रहे हैं कि वो कैसे एक साथ बढ़े। उन्हें केन और हाबिल के व्यक्तिगत रूप में देखा कि किस प्रकार से वो दोनों दाखलताएं वेदी पर मिली। वे दोनों धार्मिक थे, दोनों ही अभिषिक्त थे, दोनों ही जीवन की आशा करते थे और एक ही परमेश्वर की आराधना करते थे। और एक अस्वीकार कर दिया गया और दूसरा ग्रहण किया गया। और एक ही कारण है, वो जो ग्रहण किया गया उसने अपने भाई से कुछ भिन्न किया था और ये उस पर प्रकाशित किया गया था, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है विश्वास के द्वारा, इब्रानियों 11:11। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी कि वो धार्मिक था। यीशु ने कहा कि वो कौन था, ये आत्मिक प्रश्न है। मनुष्य क्या कहता है कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूँ? उसने कहा, पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमाउन, तू धन्य है, योना के पुत्र शमाउन, मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर ये प्रकट किया है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या वचन का सही प्रकाशन? ये फिर सच्ची दाखलता है। हाबिल ने विश्वास से, आपने कहा ये कोई प्रकाशन नहीं था। विश्वास क्या है? विश्वास कुछ है जो आप पर प्रकट हुआ है, जो अभी कुछ नहीं है, परंतु आप ये विश्वास करते हैं ये होगा ही। विश्वास परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन है। इसलिए प्रकाशन द्वारा, और आज गिरजे आत्मिक प्रकाशन में विश्वास तक नहीं करते। वे सैद्धांतिक शिक्षाओं की विधियों में विश्वास करते हैं। प्रकाशन के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसकी परमेश्वर ने गवाही दी कि वो धार्मिक था। आमीन। मुझे आशा है कि आप ये देख सकते हैं।
देखिए हम कहाँ रह रहे हैं, समय को देखिए।
अधिक समय नहीं बीता, मैं किसी सज्जन पुरुष से बातें कर रहा था। वो एक मसीह विद्वान और सज्जन पुरुष था। उसने कहा, श्री ब्रैनम, हम सब प्रकाशनों को नकारते हैं। मैंने कहा, तो तुम्हें यीशु मसीह का भी इनकार करना होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर मानवीय देह में प्रकट हुआ। जब तक आप ये नहीं देख सकते, आप बर्बाद हैं। यीशु ने कहा, जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं ही वो हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। वो परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यदि तुम इसका विश्वास नहीं कर सकते, आप नष्ट हैं। आप उसे तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति या परमेश्वर को छोड़ कोई सा व्यक्ति बनाते हैं, तो आप नष्ट हो गए। जब तक तुम ये विश्वास न करो कि मैं वो हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। ये एक प्रकाशन है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे ना देख सके। जब तक कि पिता ही किसी को ना खींच ले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है उन जड़ों में, वो मेरे पास आएगा। देखा, समझे आप इसे? ओ, हमें उसे कितना प्रेम करना चाहिए, पूजना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, कि आत्मा के फलों को अंतिम दिनों में देखते हुए और दुल्हन वृक्ष समय की चोटी पर पक रही है। सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता दोनों पर एक ही अभिषेक है। पानी दोनों पर ही गिरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमें चेतावनी दी है कि यदि हो सकता है तो चुनौतियों को भी धोखा देता है, यदि ये संभव होता। वे एक समान दिखते हैं, वे एक ही अभिषेक में हैं, परंतु ध्यान दें, उनके फलों के द्वारा आप कैसे जान जाते हैं? आप कैसे जान जाते हैं ये संतरा नहीं है, क्योंकि इस पर चकोतरा लगा है। जो जीवन इस दाखलता में है वो ठीक है, और दाखलता भी ठीक है, परंतु इस पर चकोतरा लगा है। ये पहले वाले के समान नहीं है। और यदि कलीसिया यह कहे कि वे विश्वास करते हैं यीशु मसीह कल आज और सदा तक एक सा है और उसकी सामर्थ और कामों और उसके वचन को नकारें, यदि कलीसिया जो यीशु मसीह का विश्वास करे तो वो यीशु मसीह के कामों को करेगी, उसमें यीशु मसीह का जीवन होगा, और यदि नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं, उसमें जीवन डाला गया है। यदि वो जड़ से ही पहले से नहीं ठहराए गए थे तो वो चकोतरा ही या और ही कुछ उगाएंगे, परंतु यदि वो जड़ में ही पहले से ठहराए गए हैं तो वो यीशु मसीह को जो आज कल और सर्वदा एक सा है उसी को दर्शाएंगे। यदि ये वचन ही है जो जड़ से चला आ रहा है, वो जो समय के आरंभ से ही जड़ है, ध्यान दें, परंतु जो वो उगाएंगे उसी से ही भिन्नता मालूम पड़ेगी, उनके फलों के द्वारा। यीशु ने कहा तुम उनको पहचान लोगे। मनुष्य कांटों से अंगूर नहीं तोड़ते, यद्यपि कांटे दाखलता में होते हैं, ये हो सकता है, परंतु फल ही बताएंगे। फल क्या होता है? एक शब्द एक मौसम के फल के लिए, और यही वो है उनकी शिक्षाएं। किसकी शिक्षा? उस समय काल की शिक्षा कि ये कौन सा समय है, मनुष्यों के मत उन नामधारों की शिक्षा या परमेश्वर की शिक्षा उस समय काल के लिए। अब समय तेजी से निकल रहा है कि हम इस पर थोड़ा सा और ठहरते हैं, परंतु मैं आश्वस्त हूँ कि आप जो यहाँ बैठे हैं और जो देश के दूसरे भागों में हैं, इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसी पे रुके रहें। परंतु आप देख सकते हैं कि अभिषेक अधर्मी झूठे शिक्षकों पर आता है, और यही कारण है कि वो वही करते हैं जिसको परमेश्वर ने करने को मना किया है, और वो कैसे भी वो करेंगे, क्यों? वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक कांटा कैसे भी कुछ और नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो कांटा ही रहे, इससे कुछ नहीं कि उस पर कितनी वर्षा हुई है, उसे तो कांटा ही रहना है। यही कारण है कि यीशु ने कहा है कि वो इतने समान होंगे कि वो जो जड़ से चुने हुए हैं उनको भी धोखा दे सकें, यदि ये संभव होता, परंतु ये संभव नहीं है। एक गेहूं इसको छोड़ कुछ नहीं कर सकता कि वो गेहूं उगाए, वो यही उगा सकता है। ध्यान दे, याद रहे, परमेश्वर ने संगठन नहीं बनाए, शैतान ही संगठनों को बनाने वाला है। मैं वचन से इधर से उधर से बार बार सिद्ध कर चुका हूँ, इसमें अब हमें आज प्रातः जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को कभी भी इस प्रकार संगठित नहीं किया कि एक संगठन बनाया जाए। अंतिम चेले की मृत्यु के सैकड़ों वर्ष पश्चात वो कभी संगठित नहीं हुए, यह सदैव असफल सिद्ध हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो हम सब आज प्रेम में एक साथ क्यों नहीं है, ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और सब, तो फिर परमेश्वर के काम हम में क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि सारे गिरजे एक ही चीज पर हैं, वचन पर। वो चीजें जो मनुष्य के भाईचारे को मनुष्य से अलग करती हैं, तो हम परमेश्वर से पहले से भी अधिक दूर हो जाते हैं जिसके विषय में गिरजे बोल रहे हैं। अब हमें ये बताया गया है कि सारी पुरानी चीजें जो हुई हैं, वो हमारी शिक्षा, ताड़ना, चेतावनी के लिए हुई हैं। ये सब पुरानी बातें पुराने नियम में छाया के रूप में हुई हैं, कि हमारे समय में नए नियम में क्या होगा ये हम देख सकें। जैसे कि मान लो आपने अपना हाथ कभी ना देखा हो और आप उसकी छाया दीवार पर देखें कि रोशनी में मेरा हाथ कैसे होगा। यदि छाया में उसकी पांच उंगलियां हैं तो जब वो नेगेटिव में है और आप अपने हाथ को पॉजिटिव की तरह उस छाया की तरफ ले जाएं, तो उसमें भी आपको पांच ही उंगलियां मिलेंगी। जैसे कि बाइबल हमें बताती है पुराना नियम एक छाया के प्रकार में जो कि नई वस्तुओं का है या आने वाली बातों का है, बिल्कुल सही चीजों या बातों का नहीं, परंतु आने वाली बातों की छाया है। आइए हम पीछे चलकर इन बातों को देखें कि ये बातें किसी और युग में हुई हैं। आप चाहते हैं वचन से इसको आगे और पीछे से सिद्ध करें तो हम जान जाएंगे, किसी मनुष्य की धारणा या किसी सिद्धांत से नहीं। मैं चिंता नहीं करता कि वो कौन है, कोई भी व्यक्ति, मैं या कोई भी, यदि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के अनुसार नहीं बोलता तो उसमें कोई भी उजियाला नहीं, समझे आप, क्योंकि बाइबल ने यही कहा है, हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा, कोई क्यों ना हो। हम पीछे चलकर इसमें खोजें, यदि दृष्टांत की रीति पर ऐसा हुआ हो तो हम निर्गमन की पुस्तक में पीछे चलकर मूसा के चरित्र के बारे में देखेंगे, जो कि परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के वचन और इच्छा के अनुसार उस युग के लिए भेजा गया। परमेश्वर का वचन सदा एक धारा में चलता है। उसने कहा, वो जब तक पहले अपने भविष्यद्वक्ता को नहीं दिखा देता, वो तब तक कुछ नहीं करता, तब वो बाद में करता है। समझे? वो झूठ नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर होकर झूठ नहीं बोल सकता। नहीं श्रीमान, उसको तो सत्य ही रहना है, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है। वो और वो इसको बदल नहीं सकता। यदि वो बदलता है तो परमेश्वर नहीं, उसने त्रुटि करी। उसको अनंत होने के लिए, और अनंत कभी त्रुटि नहीं करता। समझे? इसलिए परमेश्वर जो भी कहता है वो अनंत सत्य है। समझे? और उसने ये प्रतिज्ञा की है। इसलिए बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि निरंतरता ना हो। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि तेरा वंश अनजाने देश में परदेशी होगा, तब उसके बाद वो उसे सामर्थी हाथों से बाहर ले आएगा। उसने उन लोगों में चिन्ह और चमत्कार दिखाए जिनमें वो रहते थे। प्रतिज्ञा का समय निकट आया, लोग इस विषय में भूल चुके थे। उनके फरूसी, सदूकी और नामधारी थे, परंतु यकायक परमेश्वर उनमें आ गया और उनको उनमें से बाहर खींच ले गया। चाहे जो भी हो, परमेश्वर ने किसी भी काल या किसी भी समय भविष्यद्वक्ता को नामधारियों में से नहीं बुलाया। नहीं श्रीमान, वो ऐसा घुमाया गया कि वो कर ही नहीं सका। उसको अपने नामधारी के साथ ही रहना पड़ा। मूसा, जो परमेश्वर के द्वारा वचन सहित भेजा गया, और अपनी यात्रा के समय जब वो इसराइल को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ले जा रहा था, तो उसे एक और भविष्यद्वक्ता मिला, एक अभिषिक्त। उसके ऊपर भी उसी पवित्र आत्मा का अभिषेक था जिसका मूसा के ऊपर था। ये ठीक बात है, वो भविष्यद्वक्ता था। उस मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा था, उसका नाम बालाम था। हम सब उससे परिचित हैं। 2800 वर्ष पहले जो बातें उसने कही थी, आज भी वही बातें पूरी हो रही हैं। हे इसराइल, तू माथे पर एक सींग वाले घोड़े की तरह है। जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप दे वो स्वयं श्रापित होगा। तेरा बल और सामर्थ, तेरे निवास क्या ही धर्मी है। ओ याकूब, देखिए, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने हृदय में लोगों के लिए श्राप लाया था। ओ तुम झूठे शिक्षकों, तुम इन टेपों को पूरे वर्ष भर सुनते आ रहे हो और देख रहे हो कि जो भी परमेश्वर ने कहा है वो सिद्ध कर रहा है, और तुम अपने अध्ययन से ये जानते हो कि ये सत्य है। तुम अपने नामधारियों के विवादों के कारण तुम उनसे झगड़ते हो और अपने लोगों को बताते हो कि वो ऐसे नहीं है। हाय तुम पर कि तुम्हारा समय अब समाप्ति पर है। बालाम भी उसी आत्मा से अभिषेक था जिससे मूसा था। भिन्नता क्या थी? मूसा की शिक्षा सिद्ध थी। बाइबल यहाँ दूसरे पत्रस में कहती है कि वो बालाम की शिक्षा थी जो इसराइल ने ग्रहण करी। परमेश्वर ने उन्हें कभी भी क्षमा नहीं किया, ना क्षमा होने वाला पाप उनमें से एक भी नहीं बचा। यद्यपि वो परमेश्वर की आशीषों के साथ आए थे और भविष्यद्वक्ता के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को देखा था और परमेश्वर के द्वारा इसको बिल्कुल प्रमाणित होते देखा था, और क्योंकि दूसरा भविष्यद्वक्ता दूसरी शिक्षा के साथ आया जो कि मूसा की शिक्षा से भिन्न थी, और मूसा से विवाद किया और लोगों में ये सिद्ध करने का यत्न किया कि मूसा गलत है, और दातान, कोहरा और बहुत से थे जो उससे सहमत थे, और इसराइलियों को व्यभिचार सिखाया और अपने संगठन के पीछे लगा लिया कि हम सब तो एक ही हैं, चाहे हम मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल और जो भी हैं, हम हैं, हम सब एक से हैं। हम एक जैसे नहीं हैं, हम अलग किए गए लोग हैं, प्रभु के लिए पवित्र वचन के लिए समर्पित, और परमेश्वर की आत्मा फलों को प्रतिज्ञा अनुसार इन दिनों में उत्पन्न करें। आप उनमें से नहीं है। मैं जानता हूँ कि कठोर बात है, परंतु वैसे ही सत्य है। अंत दिनों में परमेश्वर की सेवा में समर्पित उन लोगों में से बाहर निकल आओ। बालाम की शिक्षा न कि उसकी भविष्यवाणियां, वो तो ठीक थी, वो परमेश्वर से थी। कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं? बालाम की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो कुछ और बोल ही नहीं सकता था। परमेश्वर का अभिषेक और कुछ बोलेगा ही नहीं, और परमेश्वर ने सिद्ध किया कि ये सत्य था, परंतु ये बालाम की शिक्षा थी। अब मत्ती 24:24 से तुलना करें। वो अभिषिक्त हैं, परंतु उनकी शिक्षा गलत है। ये त्रिएकता और इस तरह की चीजें जो कि मसीह विरोधी हैं, मुझे आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे, परंतु ठोकर ना खाएंगे। और इन रेडियो को बंद ना करें और उठकर बाहर ना जाएं। बस थोड़ा सा धैर्य रखें और देखें यदि पवित्र आत्मा इसे हम पर प्रकट करे और सिद्ध करे। आप कहते हैं परंतु जो भी आप विश्वास करते हो, बस थोड़ा सा शांत बैठे रहें और सुने और परमेश्वर से कहें कि आपका हृदय खोल दे। तब आप खुद समझ जाएंगे कि आप गुलाब हैं या कांटा या आप किस स्थिति में खड़े हैं। समझे? यहूदा भी नष्ट होने के लिए पहले से ही ठहराया हुआ था, वहाँ यीशु के सामने ही बैठा था, और यीशु ने उसे बताया कि तू ही है, जो भी तू करने जा रहा है, जो कुछ भी तुझे करना है, जा जल्दी कर। वह जानता था कि वो क्या कर रहा था, परंतु उसके लिए चांदी के 30 सिक्के और बड़ा नाम, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसके चेलों में से एक गिरजे का खजांची, यीशु ने उसको अपना मित्र कहा। समझे? बाइबल ने कहा वो विनाश का पुत्र उत्पन्न हुआ। वैसे ही जैसे यीशु पैदा हुआ था, परमेश्वर का पुत्र, यदि हो सकता तो चुने हुए को भी भरमा देता। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान दें, हम दूसरी घटना को लेंगे राजाओं की पुस्तक से। एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम मिकाया था। वो इमला का पुत्र था और वो भविष्यवक्ता था, और वहाँ एक और भविष्यवक्ता था, संगठित भविष्यवक्ताओं का सरदार, वो भी अभिषिक्त था। बाइबल ने कहा वे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही जैसे उसने कहा बालाम भविष्यवक्ता था, अभिषिक्त किया हुआ, और उनमें से एक मिकाया था जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त था और परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ था और परमेश्वर के वचन के साथ था। एक सिद्धिया था जिसने सोचा कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, वो परमेश्वर से अभिषिक्त था, परंतु उसकी शिक्षा परमेश्वर के वचन से विरुद्ध थी। झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, यदि संभव हो सका तो चुने हुओं को भी धोखा दे देंगे। ध्यान दें, दोनों ही वे दोनों ही अभिषिक्त हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही है? देखें कि वचन की आहाब से क्या प्रतिज्ञा है। एलिया जो इस भविष्यवक्ता से पहले था, महान भविष्यवक्ताओं में से एक, उस समय का एक वो प्रमाणित भविष्यवक्ता था, और उस प्रमाणित भविष्यवक्ता ने कहा क्योंकि आहाब ने ये बुरा काम किया है, नबोत की जान लेने के कारण कुत्ते इसका लहू चाटेंगे और कुत्ते इजाबेल को खा जाएंगे और उसकी लोथ खेत में खाद किनाई पड़ी रहेगी। अब आप उसको कैसे आशीषित कर सकते हैं जिसको परमेश्वर ने श्रापित कर दिया, या आप कैसे श्राप दे सकते हैं जैसे बालाम ने कहा, जिसे परमेश्वर ने आशीषित कर दिया? समझे? परंतु ये भविष्यवक्ता निष्कपट थे, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वे सज्जन पुरुष थे, आदरणीय पुरुष थे। भविष्यवक्ता जो इसराइल में है उनको आदरणीय होना ही है, या एक इसराइली होने के नाते भी यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो पथरवाह कर दिए जाएंगे। वे आदरणीय लोग थे, वे समझदार और शिक्षित लोग थे, वे राष्ट्र में से आहाब के द्वारा चुने गए थे। बहन राइट, आपने देखा, राष्ट्र में से चुने हुए, बहुत ही योग्य। और जब मिकाया ने दर्शन में देखा तो वो अपने हृदय में जान गया कि वचन ने क्या कहा है, परंतु वो ये देखना चाहता था कि जो आत्मा उसके अंदर है क्या कह सकता है। इसलिए उन्होंने उससे कहा जो दूसरे भविष्यवक्ता कहते हैं तू भी वैसे ही कहना, और जब तू वैसा ही कहेगा तो क्यों ना हम तुझे अपनी संगति में ले लेंगे, संदेह ना कर, हम फिर तुझे ले लेंगे, समझे? हम तुझे अपना बना लेंगे, हम तुझे अपने डिनोमिनेशन में शामिल कर लेंगे। हम जानते हैं कि तू भविष्य तकता है, परंतु तू हमेशा श्रापी देता है, तू आहाब को हमेशा बुराई कहता है। जब सिदकिया मुख्य पुरुष, पोप या वो जो कुछ भी था, उसने आहाब को आशीष दी और कहा जाओ करो, और इमला तुम भी यही कहना, क्यों? तुम तो दरिद्र हो और तुम्हारे पास कोई कलीसिया भी नहीं है, और इन लोगों के पास तो लाखों हैं, पूरा राष्ट्र ही इनका है। अब तू भी वही कहना जैसे इन्होंने कहा है, देख तू क्या करेगा, तू राष्ट्र की धन दौलत पाएगा। वहाँ वो गलत व्यक्ति से बात कर रहा है। यदि इसको इस प्रकार कहा जाए कि मिकाया, क्या तू सिदकिया में कोई त्रुटि पा सकता है? नहीं। क्या तूने उसे कभी किसी पाप में पकड़ा है? नहीं। क्या तूने उसे किसी को बुरा कहते सुना है? नहीं। क्या तूने उसे नशे की हालत में पकड़ा? नहीं। उसकी शिक्षा पर उंगली उठा सकता है? नहीं। क्या तू सोचता है कि उसकी डॉक्टरेट की डिग्री झूठी है? नहीं। तुम विश्वास करते हो कि उसकी पीएचडी ठीक है? जी बिल्कुल सही। सनेदरिन सभा के द्वारा और सारी सभाओं के द्वारा मैं समझता हूँ ठीक है। तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं मिल जाते? क्योंकि वो वचन से अलग है। अब इनकी भी अंतिम परीक्षा होगी, जैसे कि पहले एलिया भविष्यद्वक्ता के साथ हुई। और यदि आप परमेश्वर के बालक हैं, तो फिर आप इस बाइबल के भविष्यद्वक्ता के साथ स्थिर रहेंगे। ये वचन है, समय काल पर ध्यान दें। मान लीजिए यदि सिदकिया ये कहे, ओह मैं जानता हूँ कि भविष्यद्वक्ता ने ये कहा है, परंतु ये तो अगली पीढ़ी के लिए है, ये तो अब से बहुत समय बाद के लिए है। उसने कहा प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मैं परमेश्वर की ओर से दर्शन न देख लूं, मैं आपको बता दूंगा। कहा कि फिर तुम वही बात कहना? उसने कहा मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर कहता है, और इसे छोड़ कुछ भी नहीं, कुछ अधिक नहीं। मैं इसमें से एक शब्द भी नहीं बढ़ा सकता या इसमें से एक शब्द घटा सकता। इसलिए उस रात प्रार्थना में प्रभु उसके पास दर्शन में आया। दूसरे प्रातः वो बाहर गया, उसने कहा वहाँ दो भविष्यद्वक्ता हैं, राष्ट्र का एक महान व्यक्ति, सेना और राष्ट्र की दृष्टि में सिदकिया था। वो राजा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं में मुख्य था, वो संगठन द्वारा दूसरे सब भविष्यद्वक्ताओं का मुखिया था, वो अपने संगठन द्वारा उन सब का मुखिया बनाया गया था। संभवतः सबसे पढ़ा लिखा, शिक्षित, इस कार्य के लिए सुयोग्य, और वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता कहलाया। जी हाँ, वो साधारण भविष्यद्वक्ता नहीं था, वो इब्रानी भविष्यद्वक्ता था। उस पर ध्यान दें। सिदकिया ने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं ये दो लोहे के सींग चिन्ह के तौर पे बनाऊं। एक भविष्यद्वक्ता अधिकतर चिन्ह देता है। उसने कहा ये दो लोहे के सींग बना। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, इस अभिषेक को ले और मुझसे आशीषित हो, इसको कुर्बानी की रीति पे मत ले, परंतु बात समझने की कोशिश कर। पवित्र आत्मा ने जो मेरे द्वारा अन्य भाषा में बातें करता है, वो जिसने मुझे प्रमाणित किया है, उसने मुझसे कहा इन सिंगों को ले, राजा से कहे कि वो सीरियाइयों को देश से भगा देगा, और मैं उसे वो भूमि जो इसराइल की है वापस दिला दूंगा कलीसिया को। भाई ये भी बालम की तरह आधारभूत अच्छा है, जिस तरह की बालम वहाँ पर था। बालम भी मूसा की तरह आधारभूत बातें बोल रहा था। मूसा परमेश्वर का सही नंबर 7 है, और बालम ने कहा मेरे लिए 7 वेदियाँ बनाओ, और 7 बैल और 7 मेड़ों का बलिदान तैयार करो। ये मनुष्य के पुत्र के आने के विषय में बोल रहा है। आवश्यक बातों में वो किसी भी तरह से ठीक है, और यहाँ सिदकिया वो भी आधारभूत तरह से ठीक है। ये भूमि हमारी है, क्योंकि यहाँ ये सीरियन और फिलिस्तीनी अपना और अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। हमारे शत्रुओं के पास भोजन है और हमारे बच्चे भूखे हैं। परमेश्वर ने ये भूमि हमें दी है। भाई ये एक अच्छा तर्क है। मैं सोचता हूँ कि वो इस बात को इसराइल के सामने जोर से चिल्लाकर कह सकता है, और वे भी इसके लिए चाहे जितनी जोर से चिल्ला सकते हैं। अब मैं आज के लिए बातें कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं। आपको याद है पिछले रविवार दाऊद, समझे? आप जो लोग रेडियो पर या टेलीफोन पर थे, आपको पिछले रविवार का संदेश नहीं मिला तो अवश्य ले लें। परमेश्वर की सेवा बिना उसके अभिषेक के उसे करना, इससे कुछ नहीं कितनी लगन से कितनी अच्छी तरह आप करें, परंतु फिर भी परमेश्वर द्वारा ग्रहण नहीं। यहाँ अब सिदकिया सोच रहा है कि बिल्कुल ठीक है, मिकाया ने कहा मुझे परमेश्वर से पूछ लेने दो। इसलिए वो अगली प्रातः यहोवा यूं कहता है के साथ आया। उसने अपना दर्शन को वचन से परखा। अब यदि वो सिदकिया से इस प्रकार कहता, क्या तुम जानते हो कि बाइबल के भविष्यवक्ता ने जो कहा है वो इसके साथ होगा, परंतु इस समय नहीं, क्योंकि ये एक सम्मानित व्यक्ति है। वो यत्न कर रहा है, समझने में चूक ना कीजिए, वो कलीसिया को वो चीज वापस दिलवाने का यत्न कर रहा है जो कलीसिया का है। वो उसकी संपत्ति वापस दिलवाने का यत्न कर रहा है, वो आत्मिक वस्तुएं नहीं। यदि ऐसा होता तो उसने एलिया की तरह सारे राष्ट्र को हिला दिया होता, परंतु भौतिक वस्तुएं देने की कोशिश कर रहा है। हमारी अपनी संपत्ति है, हमारा बड़ा संगठन है, हम इससे संबंधित हैं, हम और तुम सब, तुम प्रोटेस्टेंट, तुम्हें हमसे मिलकर चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में हम उसी पर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा भी है यही है कि नहीं? सच्ची कलीसिया के साथ जो परमेश्वर की है उसके साथ ना ऐसा होगा, ना होगा, हो ही नहीं सकता। ध्यान दें, उसने दर्शन देखा और इसलिए उसने कहा परमेश्वर मुझसे बोला। देखिए वो व्यक्ति निष्कपट है, उसने कहा है इन सींगों को बना और राजा के सामने जाकर और पश्चिम की ओर हो जा, या जिस ओर भी वो देश जहां वो खड़े हुए थे वहां से जिस स्थिति में जा, जोर दे, और वही यहोवा यूं कहता है होगा, उसे जीत अवश्य मिलेगी और वापस आ, जीत कलीसिया के लिए है, उन्हें बाहर निकालने जा रहा है। इसमें कितनी समानता है ना? मामला क्या है? यहाँ अब निकाय आता है, कहा कि तुम अपनी भविष्यवाणी करो, कहा कि जाइए, लेकिन मैंने इसराइल को बिना चरवाहे के तितर बितर देखा है। ओ, बिल्कुल उल्टा। अब आप कलीसिया के लोगों, अब कौन सही है? दोनों ही भविष्य तकता है। उनका अंतर हम केवल वचन के द्वारा जांच कर बता सकते हैं। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे देखा, कहा मैंने सारी सभा को उसके चारों ओर देखा। अब याद रखें, सिदकिया ने भी कहा कि उसने भी परमेश्वर को देखा है, और वही आत्मा, मैंने परमेश्वर को देखा। उसने मुझसे ये सींग बनाने को कहा लोहे से, और जाकर इन राज्यों को निकाल दे, क्योंकि ये हमारा है, इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं। वो कर सकते थे यदि वो परमेश्वर के संग ठीक रहते, वो उन्हें ही मिल जाता, परंतु वो परमेश्वर से अलग हो गए थे। संगठन इसी प्रकार से है, कलीसिया का इन बातों पर अधिकार है, परंतु आपके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से हट गए हैं, और परमेश्वर के आत्मा अभिषेक जो समय के वचन को प्रमाणित कर रहा है। क्या आप इस संदेश को ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हुए? ध्यान दें, अब क्या हुआ? उसने कहा मैंने परमेश्वर को देखा, मिकाय ने देखा, स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे, उसकी सभा उसके चारों ओर थी। उसने कहा हम में से कौन नीचे जाएगा और आहाब को धोखा देगा और मेरे प्रमाणित भविष्यवक्ता एलिया के वचनों को सच कर देगा? मैंने कहा कि कौन आ सकता है? और एलिया के पास मेरे वचन थे, और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मुझे चिंता नहीं कि वे कितने आधुनिक हो गए हैं, कितने अच्छे वे हो गए हैं, या कितने शिक्षित हो गए हैं, वे कितने बड़े हैं, मेरा वचन कभी न टलेगा। और एक झूठी आत्मा नरक से आई और अपने घुटनों पर होकर उसने कहा यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उन्हें अपना अभिषेक दूंगी, उन्हें कोई सा भी चिन्ह या चमत्कार दिखाने दो जब तक मैं उन्हें वचन से हटा रखूंगी। वो इतना भी नहीं जान पाएगा कि ये आपका वचन नहीं है, वो ख्याति के लिए इसका ध्यान नहीं देगा। भाइयों, समयों में कोई अंतर नहीं आया। भाई निवेल, ये सत्य है, आपको याद है, ये सत्य है। मैं उस पर छा जाऊंगा और उसे वही कार्य करने दूंगा जैसा और करते हैं, मैं उसे भविष्यवाणी करने दूंगा और वो झूठ बोलेगा। ये कैसे झूठ हो सकता है? क्योंकि ये वचन विरोधी है। आप कोई भी झूठ बपतिस्मा लीजिए और दूसरे वगैरह वगैरह झूठ, ये कितने सत्य प्रतीत होते हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं कि वो इसके निकल करने की कितना भी प्रयत्न करे, यदि ये परमेश्वर के इस समय के वचन विरुद्ध है तो ये झूठ है। आप कहते हैं अरे भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करते हैं और हमारा गिरजा ऐसा है और वैसा है। मुझे चिंता नहीं कि वो क्या है, यदि ये परमेश्वर के लिखित वचन जो इस समय के लिए है इसके विपरीत है तो वो झूठ है। परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। कोई मतलब नहीं कितने सच्चे, कितने शिक्षित, कितने समझदार, कितना सही प्रतीत होता है, कितना तर्कपूर्ण लगता है। यदि वो इस समय के वचन के विरुद्ध है, यदि समय ने स्वीकारा, तो अभी हम इसकी और गहराई में चलेंगे। यदि नहीं तो आज रात को फिर से इसी को लेंगे। ध्यान दें, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो निष्कपट और अच्छा व्यक्ति था। उसने कहा, तब क्या मिकाया ने उसके मुंह पर नहीं कहा, तू दूसरे शब्दों में तुम झूठी आत्मा द्वारा अभिषिक्त हो? क्या ये वो बात नहीं है जो कि एक बिशप को बतानी चाहिए थी? परंतु उसने यही किया, और इसीलिए इस बिशप ने आकर कहा, तेरी कभी भी हमारे साथ संगति नहीं होगी, और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। कहा कि तू जानता है कि मैं एक प्रमाणिक व्यक्ति हूँ, और मेरे गिरजे ने मुझे इन बातों का अध्यक्ष बनाया है। परमेश्वर के लोगों ने मत देकर मुझे बनाया है। मेरे संगठन ने मुझे ये बनाया है, और परमेश्वर ने हमें ये भूमि दी है, और वो चाहता है कि ये हमारे ही रहे। और मेरे पास यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। उसके थप्पड़ मार के कहा कि मुझे छोड़कर परमेश्वर का आत्मा तेरे पास कब चला गया? मिकाया ने कहा, कुछ एक दिन में तू इस बात को जान लेगा जब सबके सामने कैलिफोर्निया सागर के नीचे चला जाएगा और ये सारी बातें समझे। तब तुम्हें दिखाई देगा कि किस मार्ग से वो चला गया जब तुम जेल के भीतर कोठरी में बैठे होगे। अब आहा, तुम क्या कहने जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपने भविष्यद्वक्ता का विश्वास करता हूँ। क्या हो यदि इसने वचन में छानबीन की हो? देखिए, वो अपने को श्रापित देखना नहीं चाहता था। मेरी सुनिए, वो अपने को श्रापित देखना नहीं चाहता था। कोई भी नहीं चाहता। और मेरे संगठन वाले भाई, तुम्हारे साथ भी यही बात है। तुम ये सोचना चाहते हो कि तुम ठीक हो। तुम अपने हृदय के अंदर जानते हो, जब तुम लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जानते हो, जब तुम वो बातें कहते हो जो तुम कर रहे हो, और उनको प्रारंभिक प्रमाण करके लेते हो, और इस प्रकार की बातें कि तुम गलत हो। प्रारंभिक प्रमाण अन्य भाषा में बोलना कैसे हो सकता है, और जबकि परमेश्वर की आज की प्रतिज्ञा के विरोध में बोलते हो। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम श्राप नहीं चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? परंतु यहाँ पर लिखा है, इसलिए ऐसा ही होगा। ये पशु की छाप है। ये इतना मिलता जुलता सा होगा कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। सारे चिन्ह, सारे आश्चर्य कर्म, अभिषेक पुरुष, भविष्यवाणी, सब प्रकार की बातें हो रही हैं, सब प्रकार के चिन्ह, हर प्रकार के आश्चर्य कर्म, आप उनमें भिन्नता कैसे बता पाएंगे? इस समय के वचन पर ध्यान दें। इसी प्रकार आप देख मूसा को देखिए, वो बालाम को कैसे बता सकता था? या मिकाया को देखिए, हम कैसे जान गए कि वो ठीक था? वचन जो उसके सामने था, उससे अहाब के लिए भविष्यवाणी हुई थी, और वचन जो हमारे सामने है, उसने इन संगठनों के लिए आज के दिनों के लिए भविष्यवाणी की है, और ये श्राप उन पर है। और वो बातें जो उसकी सच्ची अभिषेक कलीसिया के द्वारा होंगी, उसके पास वचन होगा, एक वचन की दुल्हन। हम इसी में है, आज भी ऐसा ही है जैसा कि उस समय था। पवित्र शास्त्र कहता है, दो या तीन गवाहों के मुख से हर वचन ठहराया जाएगा। मैंने बालाम के विषय में बोला, मैंने बालाम और मूसा के विषय में कहा, और अब मैंने मिकाया और सिदकिया के विषय में कहा। अब मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों हैं, परंतु एक और बाकी तीन गवाहियां हों। मैंने उन सब के लिए लिख रखा है, परंतु समय बचाने के लिए यर्मेया, जो कि प्रमाणित रूप से निकाला हुआ था, परंतु परमेश्वर का सिद्ध भविष्यद्वक्ता था, वे उससे घृणा करते थे। वे उस पर पके गले फल उस पर फेंकते थे, और जो कुछ भी करते थे, और उसने उन्हें श्रापित किया, और जो कार्य उसने किया, और अपनी एक करवट पर लेट गया, और बातें, और इज़राइल को चिन्ह दिए कि वे गलत थे। हर भविष्यद्वक्ता, सच्चा भविष्यद्वक्ता, जो कभी भी संसार में खड़ा हुआ, उसने उन नामधारी संगठनों को जो गिरजे के थे श्रापित किया। ये सब ना बदलने वाले परमेश्वर से अब कैसे बदला जा सकता है? पवित्र आत्मा इस समय का भविष्यद्वक्ता है। वो अपने वचन को प्रकट कर सिद्ध कर रहा है। पवित्र आत्मा मूसा के समय का भविष्यद्वक्ता था। पवित्र आत्मा मिकाया के समय का भविष्यद्वक्ता था। पवित्र आत्मा जिसने वचन लिखा आता है और वचन को सिद्ध करता है। मिकाया के समय में क्या हुआ? आहाब मारा गया था, और परमेश्वर के वचन अनुसार कुत्तों ने उसका लहू चाटा था। तुम सारे झूठे शिक्षकों, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जो बोगे वही काटोगे, तुम अंधों के अंधे अगुए। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं केवल सत्य बता रहा हूँ। यदि पवित्र आत्मा मुझसे कमरे में इस प्रकार कहने को न कहता तो मैं न कहता। क्या मैंने कभी आपको गलत बात बताई जिसे परमेश्वर ने सिद्ध न किया हो? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे भाइयों जाग जाओ, परंतु मुझे ये कहने दें, ये कैसे हो सकता है कि एक कांटा कांटा होकर जागृत हो जबकि वो पहले से ही इसीलिए ठहराया गया है? कैसे हो सकता है कि चुने हुए इसे ना देख सकें? क्योंकि वो चुने हुए हैं ताकि देखें। यीशु ने कहा वो सब जिनको पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा, उनको छोड़ कोई मेरे पास नहीं आ सकता जिनको मेरे पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे दिया, जब उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए, गिरजों की किताबों में नहीं परंतु मेमने के जीवन की पुस्तक में। ध्यान दें, यर्मयाह खड़ा हुआ, लोगों में प्रकट किया गया, तब भी वे उससे घृणा करते थे, और उसने जाकर जुआ बनाया और उसे अपनी गर्दन पर रखकर लोगों के सामने आया। उन्होंने कहा ओ हम तो परमेश्वर के महान लोग हैं, क्योंकि हम तो इजरायली हैं, हम तो अपने आराधनालय के प्रति सच्चे हैं, हम हर रविवार को जाते हैं, अपनी भेंटें चढ़ाते हैं और अपनी पैसों में से देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि नबूकदनेस्सर परमेश्वर की पवित्र वस्तु में रख ले? तुम्हारे पापों से ऐसा हुआ है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु यदि नहीं करोगे तो ये तुम पर आ पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है, और अब ऐसा ही हो है। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके इस समय के वचन को जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। अब ध्यान दें, यर्मयाह परमेश्वर की इच्छा से प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, यद्यपि उससे घृणा की जाती थी। उनमें से सब अपने दिनों में द्वेष पात्र रहे, उन्होंने अपने दिनों के नामधारियों के विपरीत कार्य किए, सब ने उनसे घृणा की, यहाँ तक कि राजाओं ने भी। इसलिए उसने अपनी गर्दन पर जुआ रखा और कहा प्रभु यूं कहता है कि तुम 70 वर्ष की बंधुआ में जाओगे, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन से ये समझ मिली 70 वर्ष। तब हनानिया, मुझे लगता है आप इसका उच्चारण HANANIAH करते हैं, हनानिया जो लोगों के बीच में भविष्यद्वक्ता था, उसने आकर यर्मयाह की गर्दन से जुआ उतार कर तोड़ दिया और लोगों में एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते कहने लगा। जब वो बोल रहा था तो वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोल रहा था, और उसने कहा यहोवा यूं कहता है वे 2 वर्ष के बाद वापस आ जाएंगे। 2 अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता, उनमें क्या भिन्नता है? एक वचन से बोल रहा है और दूसरे के पास वचन नहीं है। यर्मयाह ने कहा आमीन, सारे प्राचीनों और सभा के सामने, पूरे इसराइल के सामने। देखिए, वो दिखाना चाहता था कि वो भी यर्मयाह के समान बड़ा है। तुम जानते हो कि ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते जो भी हो, इसलिए मैं भी भविष्यद्वक्ता हूँ। मैं भविष्यद्वक्ता जैसे तू है उससे कुछ बढ़कर हूँ, क्योंकि तू झूठी भविष्यवाणी कर रहा है। तुम मुझे बताओ, क्या परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातों से होकर निकलेंगे? यही वो आज भी कहते हैं, परंतु तुम भी उस गिरजे के समान वहीं पर होगे। आप श्राप से श्रापित हैं, तुम सारे के सारे गिरजो नामधारियों जो कि मनुष्य की रीति रिवाजों को पकड़े बैठे हो, बजाय परमेश्वर के वचन के कि तुम परमेश्वर के द्वारा श्रापित हो। ध्यान दे, यहाँ वो आता है, हनानिया झटके से उसकी गर्दन से जुआ उतार देता है, मानो परमेश्वर का प्रतीक उसको जुए को तोड़ देता है और कहता है यहोवा यूं कहता है कि 2 वर्षों में वो वापस आ जाएंगे, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि वो संगठन का भविष्यद्वक्ता होने के नाते वहाँ खड़ा है। यर्मयाह एकांतवासी मनुष्य है, वो अपना निर्वास स्वयं करता है, वो उनके विरोध में सदा बुरी भविष्यवाणी करता है क्योंकि वो बुरे हैं, और ये मनुष्य उन्हें बता रहा था जहाँ तक तुम्हारा संबंध है तुम सब ठीक हो, जब तक तुम इसराइल में हो बस इतना ही बहुत है। देखिए आप, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। मैं जानता हूँ यहाँ भी कुछ हुआ है, परंतु भयभीत ना हो, घबराए नहीं। ओ भाई, वो आज तक जीवित है, परेशान ना हो, सब ठीक है, हम कलीसिया हैं, सब हमारे बस में है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? जी हाँ, इसलिए उसने कहा सब ठीक ठाक है, वो 2 वर्षों बाद वापस आ जाएंगे। ये तो छोटी सी बात है, ये कुछ ऐसा विशेष नहीं, हमारे पास वो है। नबूकदनेस्सर बस यहाँ आएगा, परंतु हमारा परमेश्वर इन सब बातों को देख लेगा। परंतु वचन ने कहा कि वो 70 वर्षों के लिए वहाँ होंगे, जब तक ये पीढ़ी समाप्त होकर दूसरी ना आ जाए। 40 वर्ष की पीढ़ी होती है, ये तो लगभग 2 पीढ़ियों तक वहाँ रहेंगे। और यरमे ने कहा ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हनानिया ने इसे तोड़ दिया। यरमे ने कहा ठीक है, आमीन। परंतु हनानिया, हम इसे याद रखें, हम दोनों भविष्यद्वक्ता हैं, हम सेवक हैं। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि हम याद रखें, हमारे सामने भविष्यद्वक्ता है और उन्होंने राज्य और कुछ बातों के विरुद्ध भविष्यवाणी की है। परंतु याद रहे, जब भविष्यद्वक्ता कुछ कहता है तो वो वचनानुसार होता है, जैसे कि मिकाया, मूसा और सबने किया, वो वचन के अनुसार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो याद रखें क्या होता है। तब हनानिया अपने धार्मिक क्रोध में उठा, मैं हनानिया हूँ, प्रभु का भविष्यद्वक्ता हूँ, और मैं कहता हूँ 2 वर्ष। दूसरे शब्दों में वचन क्या कहता है, मुझे इसकी चिंता नहीं, उसका अभिषेक। मैं कहता हूँ वो 2 वर्षों में वापस आ जाएंगे। यिर्मयाह उसके सामने से चला गया, जाकर उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं चिंता नहीं करता कि उसने क्या कहा है, मैं अब भी विश्वास करता और जानता हूँ कि वचन ऐसे ही कहता है। मैं आपके साथ सच्चा रहूंगा, मैं उसके धोखे में नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जाकर हनानिया से कह दे कि अगला जुआ मैं लोहे का बनाऊंगा, और क्योंकि उसने ये किया है, वो पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा। उसी वर्ष वो मर गया। यहाँ दोनों भविष्यद्वक्ताओं के उदाहरण हैं, और बहुत से हैं जिनके विषय में इस समय बोला जा सकता है। परंतु ध्यान दें, यीशु ने कहा कि अंत के समय में फिर से ये दोनों आत्माएं समानता में होंगी। ये ठीक बात है ना? अब ध्यान दें, ये पहले से भी अधिक समानता में होंगी। ये अंत समय है। ओ बालको, प्रभु हम पर दया करे। ये इतनी समानता में प्रतीत होंगी, जब तक कि यदि हो सके तो चुनेयों को भरमा दें। हम कैसे भिन्नता पाएंगे, जैसे हमने पिछले दिनों में बता दिया, आज आप कैसे बता पाएंगे? उसी प्रकार वचन के साथ रहकर। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इस संदेश के प्रति चिंतित रहें, और जब आप टेप सुनते हैं तो उस समय हो सकता है कि प्रभु का कार्य समाप्त करके मैं किसी दिन चला जाऊंगा, तब आप फिर से इसको सुने, मेरी आवाज को सुने कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यदि वो मुझे अपने आगमन से पहले बुला ले तो केवल ध्यान रखना, मैंने वचन से प्रभु के नाम में आपको बता दिया है। जी हाँ, ध्यान रखें, ये अत्यधिक समानता में होगा कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। वो वही चिन्ह, वही आश्चर्य कर्म उसी के आत्मा के द्वारा दिखाएंगे। क्या ये ठीक है? जैसे कि भविष्यद्वक्ता थे जिनके विषय में हमने अभी बातें की, और ये भी लिखा है, यदि आप चाहें तो आइए हम निकालें 2 तीमोथियस 3, हम इसे भी ना छोड़ें। और मैं नहीं चाहता, मैं वो घड़ी भी देखता हूँ, और इसलिए मैं बहुत कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं नहीं सोचता कि हमें अभी सब कुछ कर देना चाहिए, समझे? आप यहाँ पर खड़े होकर यदि मैं पसीने से तर होता रहूँ जैसा कि हो रहा हूँ, परंतु मैं आनंदित हूँ और मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। 2 तीमोथियस 3:8, पौलुस एक मनुष्य जिसने कहा, यदि दूत भी स्वर्ग से आकर कुछ और बताए जो मैंने नहीं कहा तो वो श्रापित हो। अब दूत आता है जो कि 2 थिस्सलुनीकियों, ओ मुझे क्षमा करें, 2 ध्यान दें, 2 तीमोथियस 3:8, देखिए पौलुस बोल रहा है। हम पहले पद से आरंभ करें और ध्यानपूर्वक सुने। आप में से जिनके पास बाइबल है मेरे साथ पढ़ें, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुने। ये भी जान रखें कि अंतिम दिनों को रेखांकित कर लीजिए, जब ये सब होने को होगा। कठिन समय आएगा, हम उन्हीं दिनों में हैं, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र होंगे। इन सड़ाहट भरे हुए लोगों को देखें, यहाँ तक कि मनुष्य सड़कों पर नवयुवक अपने माथों पर स्त्रियों जैसे बालों को बढ़ाए घूमते हैं। सदोमी, क्या आपने इस वर्ष की रीडर डाइजेस्ट पुस्तक पढ़ी, जिसमें कहा है कि अमेरिका लोग अपनी उम्र में, मैं सोचता हूँ 20-25 वर्ष के बीच में ही वो अपनी अधेड़ अवस्था की स्थिति में होते हैं। वे समाप्त हो गए, उनका पतन हो गया। विज्ञान कहता है पुरुष अपनी अधेड़ अवस्था और स्त्री जब वो अपनी आरंभ के बीच में होती है, उनके शरीर भ्रष्टता के कारण खराब हो गए हैं। ओ अमेरिका, परमेश्वर ने कितनी बार तुझे सुधरने का अवसर दिया, परंतु अब तेरा समय आ गया है। तू संसार को बुराई की ओर ले गया। निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतधन, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम से रहित, पुरुष का स्त्री से और स्त्री का पुरुष से भी आपस में सच्चा प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि स्वाभाविक प्रेम नहीं, कामुकता से भ्रष्ट, क्षमा रहित, झूठा दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। दूसरे शब्दों में कहें, तुम ढोंगियों की टोली। किसी ने एक दिन किसी से यहाँ आने के लिए कहा, उसने कहा वहाँ मत जाना, वे शोर मचाने वाले और चिल्लाने वाले लोग हैं। देखा, ऐसों के बैरी, विश्वासघाती, भीड़, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले। आप कहते हैं भाई ब्रणम वो तो कम्युनिस्ट हैं। अगला पद क्या कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु क्या उसकी शक्ति को न मानेंगे। ये वचन कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, ने अपने समय की प्रतिज्ञा को प्रकट किया है। बिल्कुल हनानिया की तरह, बिल्कुल सिदकिया की तरह, बिल्कुल बालाम की तरह और दूसरे झूठे भविष्यवक्ताओं की तरह भक्ति का भेष तो धरेंगे। अभिषेक हुए, समझे, अभिषेक, अभिषेक सेवक का रूप, भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु वो कल और आज एक सा है ये नहीं मानेंगे, उसके वचन को अस्वीकार करेंगे। उस दिन उन्होंने यीशु को कैसे अस्वीकार किया था, जब यीशु को अस्वीकार किया तो वो किसको अस्वीकार किया, वचन को। वो धार्मिक थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र की शिक्षा पाई, परंतु उस समय के वचन को अस्वीकार किया। आज वे क्या है, वैसे ही अभिषिक्त, पेंतेकोस्तल के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वर्तमान की प्रतिज्ञा को जो वचन से प्रमाणित है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, उसको अस्वीकार कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, इसी तरह के लोग हैं जो दबे पांव घरों में घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हमारी सिलाई कढ़ाई की पार्टी और हमारा ये या वो, और कोई आकर वचन का गलत अर्थ बताते हुए कहता है, यदि बहन आप छोटे बाल रखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, समझे, आप छोटे कपड़े ना पहने, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो मनुष्य के हृदय से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। देखा, और क्या आपको अनुभव होता है कि आप बुरी सांसारिक अभिलाषा वाली गंदी आत्मा से अभिषिक्त हैं? मैं इसकी परवाह नहीं करता कि आप गायन मंडली में गाती हैं, परंतु आप में बुरी आत्मा है यदि आपके बाल कटे हुए हैं। ये वचन के विरुद्ध है, ये ठीक बात है, बाइबल यही कहती है, और आप कहते हैं भाई मैं छोटे पहनती हूँ, इससे मैं दोषी नहीं ठहरती। जो कोई भी हो, यदि स्त्री उन वस्त्रों को पहनती है जो पुरुष के हो, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, ना बदलने वाले परमेश्वर ने ये कहा है। ओ बहुत सी बातें हैं, हम सबको नहीं देख सकेंगे, हमारा समय समाप्त हो जाएगा, परंतु आप ये अच्छी प्रकार से जानते हैं क्या गलत और क्या ठीक है। और मैं उन्हें ये कैसे करने दूं? मैं ये कैसे कर सकता हूं? आप कहेंगे कि आप किस कारण से चिल्ला रहे हैं, मैं आपके विरुद्ध गवाह हूं। न्याय के दिन आपके पास छिपने का कोई स्थान ना होगा। मिकाया उन्हें कैसे रोक सकता था, मूसा ने कैसे चिल्लाकर उन्हें रोकने का यत्न किया, और यहोशू और वे लोग उस भीड़ के बीच में दौड़ भाग कर रहे थे, और जब तक लेवी ने अपनी तलवार निकाल कर उन्हें घात नहीं किया, तब भी वे वैसे ही चलते रहे। ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि वे ऐसा ही करने जा रहे हैं, और वे यही करेंगे, क्योंकि ये यहोवा का वचन है, वो ऐसा ही करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि वे संस्थाई मंडलियां कभी टूट कर वचन पर वापस आ जाएंगी? यहोवा यूं कहता है कि वे नहीं फिरेंगे, तो क्या वो मसीह विरोधी होंगे? बिल्कुल, यहोवा यूं कहता है कि वे होंगे। आप इस विषय में क्या कह रहे हैं? मुझे इसकी साक्षी देनी है, और इसी तरह तुम सब विश्वासियों को भी। ध्यान दें, छिछोरी स्त्रियां विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में दबी हैं, और स्त्रियां भी ऐसे ही करती हैं। झूठे भविष्यवक्ता, अब सुने, झूठे भविष्यवक्ता जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो अंत के दिनों में क्या करेंगे? छिछोरी स्त्रियों की अगुवाई करेंगे, विभिन्न संसारिक अभिलाषाओं के साथ उनकी अगुवाई करेंगे। मैं जानता हूँ कि बाकी स्त्रियाँ भी ठीक है, बढ़ते रहिए। कैलिफोर्निया की इस बड़ी घटना से पहले मैंने क्या कहा था? आप जो यहाँ लॉस एंजलिस में हैं, पहले कभी जब मैं यहाँ आया था तब की तुलना में आज यहाँ बाल कटी स्त्रियाँ और चरित्रहीन पुरुष अधिक हैं। संगठनों प्रचारक भर रहे हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है। यदि वो आश्चर्यक्रम जो तुम्हारे बीच में किए गए वो सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। ओ कफरनाउम, तू जो अपने को लॉस एंजलिस के नाम से पुकारता है, देख क्या हो रहा है, वो सीधे सागर के तल में जा रहा है। कब? मैं नहीं जानता, परंतु वो जा रहा है, जा रहा है। तुम नवयुवकों, यदि मैं ये अपने जीवन में ना देख सकूं, तो तुम देखना कि वो गया। वो सदा सीखती तो रहती है, परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अब यहाँ चौंका देने वाली बात है, चौंकाने वाला भाग है, इसे सुनिए। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वो विश्वास जो संतों को एक बार सौंपा गया था, उसी विश्वास के विषय में, और पूर्वजों के विश्वास को या बालकों के विश्वास को उनके पूर्वजों की ओर फेरेगा। विश्वास के विषय में वे परमेश्वर की ओर से अभिशप्त हैं। ओह, आप जानते हैं कि अभिशप्त का क्या अर्थ होता है? यदि आपके पास स्कॉफील्ड है तो वहाँ एच अक्षर के साथ लिखा है धर्म त्याग, धर्म त्याग, अपोस्टेसी, यही है। जरा एक मिनट, मैं यहाँ कुछ देखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने यहाँ अपने पास कुछ लिख रखा है, मैं निश्चित नहीं हूँ, फिर भी इसे कहने से पहले देख लेना चाहता हूँ। अब जरा एक मिनट, सत्य के विषय में अभिशिप्त, जो विश्वास से संबंधित है, विश्वास, केवल एक ही विश्वास है, ये ठीक बात है, विश्वास के विषय में अभिशिप्त। अब मैं लूका का 18वां अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। एक मिनट, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना और हयाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। और उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब ये प्रश्न है, यही है जिसको मैं प्रकाशित वाक्य 10 में लेना चाहता हूँ। हम थोड़ी देर में इसमें और दूसरे पदों को देखेंगे। उसने कहा, सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। यहाँ पर प्रश्न है, यदि आप इस पंक्ति को देखें, इस समय में ये पूरा होगा, क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? क्या मलाकी 4 इस समय पूरा होगा? बालकों के विश्वास को पूर्वजों के विश्वास की ओर फेर दे, जो कि मूल वचन है, समझे? निकम्मे, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस मूसा के विरोध में खड़े हुए। अब दूसरा तिमोथियस 3:8 को भी सुनिए, जैसे यन्नेस ने मूसा का विरोध किया, ऐसे ही अंत के दिनों में अभिशिप्त लोग आएंगे। अब यहाँ देखिए, वो कहता है भक्ति का भेष तो धरेंगे अभिशिप्त लोग। अब आप घर पहुँचे तो आप इसे पढ़ें, ताकि मैं इसे आज प्रातः समाप्त कर सकूं, यदि कर सका। दुराचारी के संबंध में, दुराचार में नहीं रह रहे, वो बहुत अच्छे सभ्य लोग हैं। अब ध्यान दें, जब मूसा मिस्र में यहोवा यूं कहता है वाले वचन के साथ गया जो कि प्रमाणित था, उसने इज़राइल को बुलाया, जो कि लोग थे, कलीसिया नहीं, इज़राइली लोग थे, वो कभी कलीसिया या चर्च नहीं थे, क्योंकि चर्च शब्द का अर्थ होता है बुलाए हुए लोग। वे परमेश्वर के लोग थे और जब उनका वचन के अधीन अभिषेक हुआ और वे बुलाए गए तब परमेश्वर की कलीसिया बने। तब वो वचन से वापस फिर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास ना करके और झूठे भविष्यवक्ता की बात पर कान लगाया। मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ रही है। इसराइली परमेश्वर के लोग होने के कारण परमेश्वर की हाथ की छाया में जो कि अभिषेक वचन था परमेश्वर की सामर्थ के साथ चिन्ह और आश्चर्यक्रम देखे और जब परमेश्वर उनके साथ चल रहा था तभी अभिषेक झूठा भविष्यवक्ता आया और उन्हें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध शिक्षा दी जो कि उन्होंने सुनी और तीन को छोड़ सारे जंगल में नाश हो गए। इसे ध्यान में रखें, जैसा कि नूह के दिनों में हुआ जब वो आठ प्राणी जल से बचाए गए उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। जैसा कि लूत के दिनों में हुआ जब तीन सादोम से निकल कर आए इसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा। मैं केवल आपको प्रभु के वचन को ही बता रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये बहुत थोड़े लोग होंगे। ध्यान दें, मूसा हारून के पास जाता है। मूसा परमेश्वर समान था। परमेश्वर ने उससे कहा तू परमेश्वर तुल्य है, कहा कि तू परमेश्वर समान और तेरा भाई हारून तेरा भविष्यवक्ता हो। यदि तू भली प्रकार नहीं बोल सकता तो अपने वचन उसके मुंह में डाल। कहा कि किसने मनुष्य को गूंगा बनाया, किसने मनुष्य को बोलने वाला बनाया? प्रभु ने बनाया। और जब वो वहाँ गया तो उसने क्या किया? उसने वही आश्चर्य कर्म किए जो परमेश्वर ने उससे करने को कहे थे। परमेश्वर ने उससे कहा जा अपनी लाठी डाल दे और वो सांप बन गई, और उसने उसे उठाया तो वो वापस लाठी बन गई। प्रभु ने कहा जाकर फिरौन के सामने करो और कहो यहोवा यूं कहता है। जब फिरौन ने ये देखा तो हम कहते हैं कितनी घटिया जादूगरी है। कहते हैं ये कुछ नहीं, ये मस्तिष्क का पढ़ना या टेलीपैथी या ऐसे ही कुछ है। आप जानते हैं हमारे संगठन में भी एक है जो ऐसा कर सकता है। बिशप और दूसरे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे काम होते हैं। वह शैतान था जो फिरौन में होकर बोल रहा था, दूसरी ओर परमेश्वर मूसा में होकर बोल रहा था। परंतु यहाँ ध्यान दें, यन्नेस और यम्ब्रोस मूसा के सामने आए और खुले में लोगों के सामने हर वो आश्चर्यकर्म दिखाया जो मूसा कर सकता था। यदि हो सके तो वो चुनावों को भी भरमा दें। ये ठीक बात है, वही कार्य किया जो मूसा ने किए। समझ गए आप? याद रहे ये वचन यूं कहता है और अंत के दिनों में फिर से ऐसा होगा। मूसा और यम्ब्रोस में क्या भिन्नता थी? मूसा ने कहा कि पानी में लहू हो जाए और इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने कहा कि हम भी पानी में लहू बना सकते हैं और वैसा ही हुआ। मूसा ने कहा कुटकियाँ आ जाएं। वो ये आश्चर्यक्रम कैसे कर पा रहा था? सीधे परमेश्वर की ओर से देखा। और उसने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है हम भी कुटकियाँ ला सकते हैं और उन्होंने वैसे ही किया। कोई भी आश्चर्यक्रम जो मूसा कर सकता था उन्होंने भी किए। आप इसे याद रखें, हम इसी विषय पर आएंगे थोड़ी देर बाद। वे सब कार्य कर सकते थे जो कोई भी कर सकता था, परंतु वो वचन के साथ स्थिर नहीं रह सकते थे। वे वचन के साथ स्थिर नहीं रह सकते थे। ध्यान दें कि उन्होंने यही किया, परंतु मूसा जो परमेश्वर द्वारा सच्चा अधिकार प्राप्त किया भविष्यवक्ता था उसने कभी भी उनके साथ दंगा नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। उसने उनको उन्हीं के हाल पर रहने दिया और जो करते हैं करने दिया। वो तो संगठनों के भविष्यवक्ता हैं, परंतु आप आगे बढ़ें। मूसा तो केवल परमेश्वर की सुनते हुए आगे बढ़ता रहा। परमेश्वर ने जो भी कहा कि ये करो मूसा ने वही किया। उसने एक नया काम किया। जब उन्होंने किया तो वे उत्तेजित या ऐसी कुछ हुए कि ये हो गया। उन्होंने भी ठीक वैसे ही किया जैसे मूसा ने किया। अब ध्यान दें कि ये लोग कब प्रकट हुए। आप यहाँ मत चूकिए। ये ढोंगी नकलची तब प्रकट हुए जब सच्चा पहले प्रकट हुआ। समझे आप? वे तो नकल करने के लिए आए, उन्हें तो आना ही था। शैतान किसी चीज की सृष्टि नहीं कर सकता, वो तो केवल सत्य को भ्रष्ट कर सकता है। और पाप क्या है? केवल धार्मिकता को बिगाड़ना। व्यभिचार क्या है? ठीक कार्य पद्धति में मिलावट करना। झूठ क्या है? सत्य को गलत रूप में प्रकट करना, एक भ्रष्टता। हनानिया को देखिए, मूल वचन का भ्रष्ट रूप। बालाम को देखिए, मूल वचन भ्रष्ट। सिद्किया को देखिए, मूल वचन भ्रष्ट। बाइबल कहती है कि ये लोग उस मूल वचन को जो प्रकट और प्रमाणित सत्य है उसको भ्रष्ट करने के लिए बाद में आएंगे। हर कोने में सुसमाचार प्रचार का कार्य कर और अपनी सेवकाई को सिद्ध कर, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि वे खरा उपदेश न सुन सकेंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और वे अपने हृदय की इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और ये सोचते हुए कि सब ठीक है, हमारे यहाँ भी वही चिन्ह और चमत्कार होते हैं, और सत्य से फिर जाएंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। जब मनुष्य अपने में भयभीत होकर ये सोचता है कि पवित्र आत्मा ने हमें सब कुछ बता दिया है, कितनी साधारणता से सब बातों को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। कोने के पत्थर को खोदकर उस कागज के टुकड़े को पढ़ो जो 33 वर्ष पहले यहाँ रखा गया था। उस दिन प्रातः उसने उस सातवीं गली में क्या कहा था जब ये कोने का पत्थर रखा गया था। अब इस पर ध्यान दें। जब परमेश्वर का दूत उस आग के खंभे के रूप में वहाँ नदी पर उतर आया था, उस पर ध्यान दें। वहाँ बहुत से गिरजों के सैकड़ों लोग नदी के किनारे खड़े थे। उसने क्या कहा? देखिए, यदि वही हो रहा है, देखिए क्या हुआ। ये बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ भाइयों, ये समझ में नहीं आता, परंतु ये है। बाइबल कहती है, यीशु ने स्वयं कहा है, यदि हो सके तो चुनेवों को भरमा दे। ऐसा कोई साधन नहीं कि वे इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि हो सकता तो चुनेवों को भी इसके द्वारा भटका दिया जाता। ध्यान दें, ये लोग परमेश्वर के सच्चे भेजे हुए अभिषेक भविष्यवक्ता मूसा के बाद प्रकट हुए, और जब मूसा ने कुछ किया तो ये उसकी नकल करते हैं। अब मेरे बहन भाइयों, ये मेरी अपनी कलीसिया है, मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ प्रचार करूँ जब तक ये वचन से बाहर नहीं जाती। मैं आप लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, परंतु हम जांचें कि अब हम किस समय में और किन क्षणों में रह रहे हैं। भाई रूडल को, भाई जूनियर जैक्सन और उन सब भाइयों को जो इस आराधनालय में नहीं है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कुछ देर पहले भूल गया था, मैं सोचता हूँ कि वो आज प्रातः टेलीफोन द्वारा सुन रहे होंगे, क्योंकि आराधनालय में जगह नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मिनट भर सोचें। उन्होंने वही आश्चर्य कर्म किए जो मूसा ने किए। मूसा कुटकियाँ ले आया, इन्होंने भी नकल करके और कुटकियाँ ले आए। देखा आपने, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन मर जाओगे। शैतान ने वहाँ आकर कहा निश्चय तुम न मरोगे परंतु बुद्धिमान हो जाओगे। तुम्हारे पास एक अच्छी संस्था होगी, एक अच्छी, आप समझे, आज समझिए, हर चीज अच्छी हो जाएगी आपके लिए, अधिक उजाला हो जाएगा। देखिए केवल मिलावट। याद रहे, तिमोथियस 3:18 के अनुसार ये यहोवा यूं कहता है कि अंत के दिनों में यन्नेस और यम्ब्रेस पृथ्वी पर होंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वहां दो नकल मारने वाले थे। अब हम थोड़ी देर में साधुओं पर विचार करेंगे। वहां पर तीन दूत आए थे और उनकी नकल करने को देखें कि कौन ठीक था या कौन गलत था, समझे। ध्यान दें, उन्होंने भी वही आश्चर्य कर्म किए, परंतु ध्यान दें, उन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन और परमेश्वर द्वारा भेजे गए अभिषेक की नकल की। दूसरे पीछे से आते हैं। मैं सोचता हूँ यदि हम इस पर एक मिनट विचार करें। अधिक समय नहीं, लगभग 20 वर्ष पहले हाथ पकड़ने के द्वारा चिन्ह प्रकट हुआ। भाई फिर तो बहुत चिन्ह प्रकट हुए हर तरफ और बहुतों में, किसी के सीधे हाथ में, किसी के बाएं हाथ में, कुछ लोग सूंघते थे, हर प्रकार के चिन्ह। मेरे विचार में परमेश्वर ने अभी मुझे आपको बताने की अनुमति नहीं देगा, परंतु सत्य क्या है ये आप एक दिन जान जाएंगे। इससे केवल उनकी अज्ञानता ही प्रकट हुई, वो तो आरंभ से ही ठीक नहीं थे। यदि परमेश्वर ने अनुमति दी तो मैं एक दिन बता दूंगा। ध्यान दें, उन्होंने वही आश्चर्य कर्म किए, परंतु ध्यान दें कि सच्चे वचन के आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस प्रकार शैतान ने अदन की वाटिका में किया, उसी प्रकार वो सदा करता रहा है। पहले किसने भविष्यवाणी की? मूसा ने। दृश्य में पहले कौन आया, मूसा या बालाम? मूसा। दृश्य में पहले कौन आया, यर्मया या हनानिया? आप समझिए इसमें क्या अर्थ है। ध्यान दें, उन्होंने नकल की, शारीरिक अभिनय करने वाले, पूरी लगन से, और सोच रहे हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जैसे दाऊद ने की, पिछले सप्ताह देखा था केवल शारीरिक नकल। मैं कुछ क्षण के लिए इन क्षणों के बीच में रुक रहा हूँ कि आप विचार करें। यदि मैं नहीं कहता हूँ तो निश्चय पवित्र आत्मा विशेष रूप से जो चुने हुए हैं उन पर ये प्रकट करेगा, समझे? फिरौन का डिनोमिनेशन कहता है हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, और उन्होंने किए। देखा, फिरौन ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी? परमेश्वर क्यों सच्चे अभिषेक भविष्यद्वक्ता को ये चिन्ह दिखाने को क्यों भेजता है, और क्यों नामधारी वाले गिरजे वालों को इसकी नकल करने देता है? वो क्यों किसी नकली को उभरने देता है, और वो वही काम करता है जो परमेश्वर की सच्ची आत्मा ने किए ताकि वचन पूरा हो। ध्यान दें, उसने ये किया ताकि फिरौन के हृदय को कठोर कर दे, और मिस्री ये सिद्ध कर दे कि केवल मूसा ही के पास वचन नहीं है, वो मूसा की तरह सब कार्य कर सकते थे। और परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में भी ऐसा क्यों होने दिया? बिल्कुल वही बात जैसे झूठी आत्मा ने सिदकिया से कहा, हम कैसे आहाब को वहाँ पहुँचाएं कि ये बातें घटित हों। और वो ऐसे ही लोगों को ला रहा है कि अपने गिरजों पर विश्वास करें, और वो सब बातें घटित हों जिनकी भविष्यवाणी उसने की है जो लुदिकिया कलीसिया काल में है। क्योंकि तू कहता है तू धनी है और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, मैं रानी बन बैठी हूँ, है कंगाल। नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और अंधा है, और मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आकर मुझसे तेल और सोना मोल ले ले। वो ऐसा क्यों करता है? जब ये सब चीजें परमेश्वर के सच्चे वचन के अनुसार हो रही हैं, तो फिर वो इन व्यक्तियों को अंत के दिनों में क्यों उभर देने दे रहा है? और वो नकल करने वाले आकर वही काम करते हैं और परमेश्वर के सच्चे वचन को नकारते हैं। उसने मूसा के साथ किया और फिरौन ने उसका विरोध किया, और उन यन्नेस यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, और बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में फिर वैसा ही होगा, और हम यहीं पर हैं। अब यदि वचन पूरा नहीं हो रहा है तो हम कहाँ हैं? क्या विवाद करते हुए मूसा ने ये कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके लिए केवल मैं ही अभिषेक हूँ, तुम इसे इसी समय बंद करो? उसने उन्हें भी करने दिया, उन्हें चलने दीजिए। ध्यान रहे, बाइबल कहती है जैसी उनकी मूर्खता प्रकट हुई उसी प्रकार अंत के दिनों में वो भी प्रकट होंगे जब दुल्हन आकाश में उठा ली जाएगी। ध्यान दें, मूसा जो सत्य वचन प्रकट करता है उसने कभी भी उनके लिए कुछ नहीं कहा और उन्हें चलने दिया, परंतु उसने ऐसा इसलिए किया कि फिरौन का हृदय कठोर हो जाए जिससे फिरौन धोखे में रहे। उसने आहाब के समय में भी ऐसा ही किया ताकि आहाब धोखा खा सके। वो मामूली व्यक्ति खड़ा हुआ है, मिकाया, उनसे कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है, और उधर दूसरा अभिषिक्त खड़ा हुआ है कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है, और दोनों बातें आपस में विरोधात्मक हैं। हम भी आज यहोवा यूं कहता है कि पानी का बपतिस्मा इन अंत के दिनों में यीशु मसीह के नाम में है इस बात पर खड़े हैं, और दूसरे व्यक्ति भी आश्चर्यक्रम दिखाता है और त्रिएकवादी है। मुझे बाइबल में त्रिएकता शब्द दिखाएं, मुझे दिखाए कि कहां तीन परमेश्वर हैं, मुझे दिखाए कि कहां है इस प्रकार की बातें। ये परमेश्वर के वचन में नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां कहीं भी इन उपाधियों का प्रयोग करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो। ये सब बातें ठीक हैं, ओह बहनों ये सब ठीक है, ये सब ठीक है कि आपके लंबे आपके छोटे बाल ये ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है या वो, ये सब पागलपन है, ये कोई बूढ़ा मूर्ख होगा जो कहता है। परंतु बाइबल कहती है और उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अंत के दिनों में एलिया भविष्यद्वक्ता की आत्मा को भेजेगा, और वो परमेश्वर के पुत्रों को फिर से मूल विश्वास जैसे कि वचन के आरंभ में था वही फेर देगा। वो वचन अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र की पुष्टि करेगा वैसे ही जैसे साधों में था कि वो कल आज और सदा एक सा है। उसने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये यहोवा यूं कहता है। ध्यान दें, उन्होंने भी वैसे ही कार्य किए जैसे मूसा ने किए जब तक परमेश्वर उनसे उकता नहीं गया। अब याद रखें, ये यहोवा यूं कहता है और ये इन दिनों में घटित होगा। अब संसार में ढूंढें, किसी भी पंथ को लें, किसी भी कुल में देखें, हर व्यक्ति हर गिरजे को देखें, मैं हर प्रचारक पर आप पर ऐसा करने के लिए मसीह के नाम से दोष लगाता हूँ। मैं विशेषतया कहता हूँ कि आप अखबार पढ़ें या कोई और विचार करके देखें या जहीं कहाँ भी आप जाकर देखें कि ऐसा इस समय पृथ्वी पर है कि नहीं, समझे आप? तो फिर मत्ती 24:24 बिल्कुल ठीक है। झूठे भविष्यद्वक्ता अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। अब इस अनुरूपता को देखिए, जैसे कि हो रहा है, देखिए ये बहुतों को धोखा देंगे। भविष्यद्वक्ताओं बहुवचन, मसीही अभिषिक्तों का बहुवचन, बहुत प्रकार के मेथोडिस्ट आप जानते हैं और बैप्टिस्ट और पेंटिकोस्टल और ऐसे ही देखा आपने, परंतु एक मसीह की सत्य आत्मा है और वो वचन देहधारी हुआ जैसे कि उसने करने की प्रतिज्ञा की है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कुछ और पदों में। जब तक परमेश्वर इनसे उकता नहीं जाता तब ये समाप्त हो जाएंगे और इनकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। ध्यान दें, याद रखें, कड़वे दाने बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे दिखाई पड़ते हैं, समझे? अब ये बात आप लूथरन काल के लिए नहीं कह सकते। वो डंठल गेहूं ही था, उसके अंदर जीवन था। डंठल ठीक है और जो जीवन डंठल में है वो ठीक था, परंतु याद रखें कि जीवन आगे बढ़ गया है, वो एलीशा से एलिया जीवन बढ़ता जा रहा है, परंतु याद रखें कि अब वो दूसरे कार्य क्षेत्र में है, वो उसी स्थिति में नहीं रह सकता। हम किसी और युग का सड़ा मांस नहीं खा सकते, हम पेंटिकोस्टल का सड़ा मांस या मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट का सड़ा मांस नहीं खा सकते। देखिए वो मांस सड़ चुका है, हमारे पास ताजा भोजन है, इस समय का वचन। याद रहे वो भूसी भी गेहूं के दाने के समान होती है, वो अंकुरित पौधे में समान नहीं दिखती, ये पौधे में समान नहीं दिखती, परंतु वो बिल्कुल दाने के छिलके के समान होती है। वो ऐसी नहीं दिखती थी, यीशु मसीह लूथर के काल में एक सा था, वेस्ली काल में वैसा नहीं था, परंतु पेंटिकोस्टल काल में अवश्य भिन्न था, कि यदि हो सकता तो चुने हुए को धोखा दे दे। समझिए ये आपके युग हैं, परंतु याद रहे कि पेंटिकोस्टल कलीसिया इन अंत के दिनों में लोदेसिया थी और मसीह जो बीज है उसे बाहर कर दिया, जो स्वयं में गेहूं का बीज है। जब उसने ये प्रयत्न किया कि अपने को कलीसिया में प्रकट करे तो उसे बाहर निकाल दिया गया, परंतु वो अब भी कलीसिया थी और अपने को अभिषिक्त होने का दावा करती थी। परंतु यहाँ वचन है मसीह स्वयं जो कि अभिषेक किया हुआ वचन, जो कि केवल अपनी देह जो दुल्हन है उसके लिए आएगा। जिस पानी से गेहूं की सिंचाई हुई उसी से वो भी अभिषिक्त हैं, जैसा कि हमने देखा कि ऊंट कटारे भी अभिषिक्त हैं। केवल चुने हुए जो पहले से ठहराए गए हैं वही इस योग्य होंगे कि उसमें भिन्नता देख सकें। अब इफिसियों 5:1 आपको यही बताता है कि ये कैसे था, वे अभिषिक्त लोग हैं। हर कोई कहता है कि परमेश्वर की महिमा हो कि हमें यहाँ स्वतंत्रता मिली है, हालेलुया। ओ हम तो अन्य भाषाओं में बात करते हैं और उछलते हैं, हमें महिलाओं की स्वतंत्रता मिली है, आप लोगों ने उन्हें वैसे ही बहुत सारी बातों के तले दबा रखा है। देखिए थोड़ा आगे चले, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। वे कहते हैं भाई हम तो अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम आत्मा में नाचते हैं, हम वचन प्रचारते हैं। बिल्कुल इन्हीं बातों के विरुद्ध में कुछ नहीं कहना है, पवित्र शास्त्र में भी लोगों ने यही किया। यीशु ने कहा कि यही चुने हुओं को यदि हो सके तो धोखा देंगे, चुने हुओं को ही। अब बीज के खोल पर ध्यान दें, उस मूल बीज से वो जो भूमि में गया वो संगठित नहीं था, वो अपने में केवल एक था, परंतु जब वो ऊपर आया तो वो केवल बीज नहीं था, वो संगठन था। देखिए पत्ते और दाने, तब वो दूसरी अवस्था में पहुंचा जो फुंदनी वाली थी, अब भी आरंभ की स्थिति में नहीं थी, ये भी एक संगठन था। तब ये दाने के ऊपर के खोल अवस्था में आ गया, तब पैंती कौशलों ने लगभग पत्तों का रूप ले लिया। अब इसे देखिए, ये समय अनुसार अपना रूप वैसे ही बदल रहा है, गेहूं के दाने के समान दिख रहा है यदि आप उसके ऊपर का छिलका देखेंगे, परंतु अंततः वो प्रकट होगा, परंतु कोई संगठन नहीं, अब उसे कोई भी आगे बढ़ाने वाला नहीं है। संगठन केवल एक आगे ले जाने वाला है, अब उसे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। डंठल मर गया, ऊपर का छिलका मर गया और हर चीज ने मर जाना है, केवल गेहूं का बीज जीवित रहेगा। यही पुनरुत्थान का शरीर है कि वो आकर इसे उठा ले जाता है। वो जो पिछले थे अगले होंगे, जो पहले थे वो पिछले होंगे। देखिए वो पुनरुत्थान में उन्हें ले जाता है, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, ध्यान दें, बीज, ध्यान दें, छिलका बीज जैसा ही दिखता है, और एक व्यक्ति जो गेहूं या किसी और चीज की खेती करता है वो देखकर कह सकता है परमेश्वर की महिमा हो, मेरी गेहूं की फसल हो गई, जबकि वहाँ पर कहीं भी गेहूं नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल बीज के समान दिख रहा है जबकि वो छिलका है। मित्रों अब मेरे साथ वापस चलें। जब गेहूं का बीज भूमि में गिरा था वो शरीर यानी मसीह की दुल्हन तब पहली बेदारी कहाँ आई? मृत्यु के बाद मसीह ने अपनी दुल्हन को संगठित किया, उसकी कलीसिया। क्या ये ठीक बात है? उसने कभी भी उन्हें संगठित नहीं किया, उसने केवल कलीसिया को साफ रखने के लिए प्रेरित और भविष्यद्वक्ता वगैरह को बीच में रखा। परंतु निसिया रोम में 306 वर्ष बाद उन्होंने इसे संगठित करके संगठन बना दिया, ठीक है ना? और वो मर गई। हर वो जो गिरजे से सहमत ना हुआ उसे मार दिया गया और अब भी वो सैकड़ों वर्षों से मट्टी में पड़े हैं। परंतु कुछ समय बाद वो कलीसिया लूथर के साथ होली, तब बीच का वो पहला किला फूट निकला, तब दूसरा किला वहीं से निकला, तब वो जुंगली के समय तक पहुँचे और बढ़ते हुए संगठनों वगैरह में चले गए। तब कुछ समय पश्चात एंग्लिकन आते हैं और तब क्या हुआ? तब वैसरी एक नई बेदारी के साथ आए। ये फुंदरी बहुत कुछ गेहूं के समान लगती है। फिर क्या हुआ इससे? वो संगठित हुए और सूख कर मर गए। जीवन अब ऊपर छिलके यानी बाल में पहुंच गया और ये छिलका प्रकट हुआ और बिल्कुल गेहूं जैसे दिखने लगा। परंतु उसकी मूर्खता अंत में 8-10 वर्षों में प्रकट हो गई, या विशेषकर पिछले 3 वर्षों में। अब ये क्या करते हैं? गेहूं के बीज से अलग हो जाते हैं। इन पिछले 20 वर्षों की बेदारी के पश्चात भी क्यों नहीं कोई संगठन बना? इसके अभिषेक भविष्यद्वक्ता, अभिषेक शिक्षक वगैरह हैं, परंतु फिर भी संगठित नहीं हुआ। बीज से आगे और कुछ नहीं है। देखिए ये बिना संगठन के है। एक अंधा मनुष्य भी ये देख सकता है। ये संगठित नहीं हो सकती, ये इसके विरोध में है। ये तो स्वयं में गेहूं का बीज है। मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, वो मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में गेहूं का बीज फिर से वापस आएगा और अंत के दिनों में झूठे नकल करने वाले आएंगे। वो लगभग चुने हुओं को धोखा दे देंगे यदि हो सका तो। उनके संगठित छिलकों को देखिए जो अब अलग हो रहे हैं। ये तो केवल गेहूं ही जान पाते हैं जो चुने हुए हैं और इसी के भाग हैं। ध्यान दें कि ये कितनी सुंदर है जो हमारे सामने है। ध्यान दें केवल सच्चे चुने हुए अभिषिक्त जो पहले से ठहराए जा चुके हैं, इफिसियों 5:1-5 जो कि चुने हुए अभिषिक्त हैं, केवल वही होंगे जो धोखा नहीं खाएंगे। ध्यान दें अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता फिर भी झूठे होंगे और उनके बीच में सच्चे अभिषिक्त होंगे। आप कैसे पहचानेंगे? वचन के द्वारा। जैसे कि अभी इसकी छाया देखी, क्या आप देख पा रहे हैं? तो आमीन कहें। देखा, अभिषिक्तों पर ध्यान दें, केवल वचन ही उनको अलग दिखाता है, चिन्ह नहीं। ओ नहीं, वो भी वैसे ही चिन्ह दिखाएंगे, परंतु वचन ही ने उनको अलग कर दिया है। बिल्कुल, वे सब भविष्यवाणी करते हैं, ये वो और सब कुछ वैसे ही करते हैं। यीशु ने कहा वो भी वही काम करेंगे, परंतु वो वचन ही है जिसने उन्हें अलग कर दिया है। ध्यान दें, चमत्कारों ने नहीं। आपने ध्यान दिया, यीशु ने मत्ती 24 में कहा है, क्या उसने नहीं कहा कि अंत के दिनों में झूठे यीशु उठ खड़े होंगे? ओ नहीं, वे कभी भी वचन पर स्थिर नहीं रह सकेंगे। आप एक पेंतिकोस्तल को जो सच में पेंतिकोस्तल है उसे लें, क्या वो स्वयं को कहता है कि वो यीशु है? समझे, आप किसी झूठे मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या किसी और को या किसी संगठन को जो कहता हो हम यीशु हैं, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। परंतु बाइबल कहती है कि वे झूठे मसीही होंगे, यीशु नहीं परंतु झूठे मसीही। वे इस बात को कभी मान्यता नहीं देंगे। यदि कोई और कहे कि मैं यीशु हूँ, ओ कभी नहीं। परंतु वो झूठे मसीह हैं और वो नहीं जानते, क्योंकि वे वचन के विरुद्ध हैं और परमेश्वर इसी प्रकार प्रकट करता है। अब मैं आपके सामने एक दृश्य लाने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके द्वारा भी वही कार्य हो रहे हैं जो सच्चे लोगों के द्वारा हुए। यीशु ने ऐसा ही कहा है। अब जो मैंने आप लोगों से जो दूर टेलीफोन से सुन रहे हैं, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, परंतु ये मैं अपनी कलीसिया और अपने लोगों में जिनके लिए मुझे पवित्र आत्मा ने ठहराया है और मुझे उनको सत्य बताना ही है। समय बीता जा रहा है, अब वे कभी इसका पक्ष नहीं लेंगे, परंतु वे झूठे मसीही, झूठे अभिषिक्त, लगभग सभी चिन्हों और हर वचन के साथ। वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का विश्वास करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। इन सब बातों का विश्वास करते हैं, जी हाँ। अन्य भाषाओं का विश्वास करते हैं, जी हाँ। चिन्ह और आश्चर्यक्रम का विश्वास करते हैं और चिन्ह उनके द्वारा होंगे, जी हाँ। वो मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट नहीं, नहीं, वो पेंटिकोस्टल हैं। देखिए ये अंतिम दिन है। प्रथम कलीसिया काल ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मेथोडिस्ट कलीसिया युग ने ध्यान नहीं दिया। बैप्टिस्ट कलीसिया युग ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। प्रेस्बिटेरियन कलीसिया युग ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। परंतु पेंटिकोस्टल वास्तविकता के बहुत पास हैं। यहाँ गेहूं और उसके ऊपर का छिलका गेहूं जैसा ही है। वो इस पर कभी ध्यान नहीं देंगे, देखा, कभी नहीं। परंतु अंतिम दिन, ये दिन, जी हाँ श्रीमान, ध्यान दें, जैसा कि आरंभ में था ऐसा ही अंत में होगा। जैसे हवा ने केवल एक वचन का गलत अर्थ निकाला, शैतान ने हवा से करवाया और उसने विश्वास किया। हवा ने आदम से नहीं, कलीसिया ने, यीशु मसीह ने नहीं, समझे? वो कलीसिया ही थी जिसने झूठा वचन ग्रहण किया, समझे? आदम नहीं, हवा, मसीह नहीं, परंतु कलीसिया अर्थात दुल्हन। वो अभिषेक जो अपने को दुल्हन कहती है, देखिए उसने झूठा वचन ग्रहण किया। क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं? क्यों? इसने जूते के फीते के समान आपस में बांध रखा है, जैसे पलके आपकी आंखों पर। क्यों? बाइबल में हर चीज को पलट कर देखें तो वो सब को एक जगह इकट्ठा करती है। हवा, आदम नहीं, हवा ने विश्वास किया, आदम ने नहीं। जो अपने आप को दुल्हन कहलाती है उसने विश्वास किया, मसीह ने नहीं। दुल्हन के भी जो कहलाती है उनमें भी वही चिन्ह, वही चमत्कार, हर चीज वही, परंतु फिर भी सच्ची नहीं, समझे? यदि हो सके तो चुनावों को भरमा दे। अब थोड़ा जल्दी करके यदि हम इसे समाप्त कर सके तो 15 मिनट में हम समय पर ही होंगे। बहुत ही ध्यान दें ताकि आप गलत ना समझ जाएं, समझे? अब वो अपने को झूठा यीशु कहलाने के लिए तैयार ना होंगे। वे अपने को झूठा यीशु कभी नहीं कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये कोई भी जान पाएगा। कोई भी जानता है कि वे यीशु नहीं थे। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि उनके पीठ पर तेल हो और उनके हाथों में लहू और उनकी आंखें डबडबाई सी हो। वो तब भी जान जाएंगे कि वो कोई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति जान सकता है कि वो यीशु नहीं है, समझे? वे इसके लिए विवाद नहीं करेंगे, परंतु वे अपने को अभिषेक कहलाएंगे और वो चिन्ह और आश्चर्यक्रम करते हैं कि चुनावों को धोखा दे ही दें। परंतु झूठे अभिषेक मसीह उठ खड़े होंगे कि यदि हो सके तो चुनावों को भरमा दें। अब जरा ध्यान से सुने, इस बात को कान पर से निकलने ना दें, क्योंकि ये सुनने के योग्य है। यहाँ कुछ, यह माइक्रोफोन के साथ टेप रिकॉर्डर लगा रहे हैं ताकि ये रहना जाए। मुझे पसीना आ रहा है और टेप के ऊपर टपक गया, देखिए। और इसलिए ये ऐसा ही होगा, पवित्र शास्त्र कहता है ये ऐसा ही होगा। ध्यान दें, झूठे यीशु नहीं, झूठे मसीही। वे विश्वास करते हैं कि वे अभिषिक्त हैं, परंतु वे जानते हैं कि वे यीशु नहीं है। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। और यदि कोई आकर कहे, देखो मेरे हाथों में ये निशान, मेरी भौंह के ऊपर देखो, मैं यीशु हूँ, तो हम जानते हैं कि ये गलत है। और याद रखें कि यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा। उसने कहा झूठे मसीह प्रकट होंगे, मसीह, बहुवचन, नामधारी गिरजे और ऐसे ही अभिषिक्त लोग, नामधारियों की आत्मा से अभिषिक्त और वचन से नहीं। अब समझे आप, झूठे यीशु नहीं, झूठे मसीही, झूठे अभिषिक्त लोग। ओ देखिए कितना स्पष्ट है, निश्चय अब आप समझ जाएंगे। आप याद रखें, मैंने हमेशा आपको बताया है कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन जाति के लोग होते हैं, हेम, शेम, जापेत, तीन जातियाँ, तीन श्रेणियाँ। और मैंने बताया कि वे विश्वासी, दिखावटी विश्वासी और अविश्वासी, ये सदा ऐसे ही रहा है और सदा ऐसे ही रहेगा, समझे? मूसा जो विश्वासी था, यन्नेस और यम्ब्रेस अविश्वासी, एक बालाम था, मूसा, हमेशा तीन श्रेणियों के लोग होते हैं, विश्वासी, बनावटी विश्वासी और अविश्वासी। अब याद रखें, अविश्वासी, डिनोमिनेशन या संस्थाई गिरजे, वो किसी भी प्रकार के चिन्हों में विश्वास नहीं रखते। वो ठंडे रिवाजों वाली ऐसी कलीसियाएं संसार में संस्थाई हैं, परंतु बनावटी विश्वासी, बीज का खोल, ये लोग दिखावटी विश्वासी हैं। और तब एक सच्चे विश्वासी जो कि सच्चे हैं। अब ये जैसे आगे बढ़ते हैं, उन्हें जरा एक मिनट के लिए देखें और ध्यान दें कि ये अविश्वासी कितने निर्भीक होते हैं, या दिखावटी विश्वासी और अविश्वासी। ओ देखें वे कितने निर्भय होते हैं, जैसे कि शैतान सच्चे वचन की उपस्थिति में खड़ा होकर कहता है कि ये लिखा है। ये ठीक बात है ना? शैतान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसके लिए वचन नहीं जानता था। वो जानता था कि वचन उस समय के लिए है, परंतु उसे उस नम्र व्यक्ति का संदेह था कि यही वचन है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि वो यही करेगा, और ये लिखा है कि वो दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा। देखा, मुझे सिद्ध करके दिखा, एक आश्चर्यकर्म कर, मैं देखूं कि तू कर सकता है कि नहीं। देखा, देखिए, अविश्वासी और दिखावटी विश्वासी और नाटकबाज, उस यहूदा को देखें जो उस समय उनके बीच में दिखावटी विश्वासी था। ध्यान दें, वहाँ सच्चा वचन था, वे कितने साहसी हैं। अब आप इस मूर्खता पर बिल्कुल ध्यान न दें, इससे कुछ नहीं होता। वहाँ मत जाओ, वे केवल शोर करने वाले हैं, वहाँ इससे कुछ नहीं होता। ये सब केवल आपके मस्तिष्क की कल्पना है। देखा, समझे मेरा क्या अर्थ है? परमेश्वर के वचन के सामने खड़े होकर ये कहते हैं, शैतान अंदर आ जाता है, जैसे कि पवित्र शास्त्र यहूदा की पत्री में कहता है, जबकि प्रधान दूत शैतान से वाद विवाद कर रहा था तो उसने कहा, प्रभु ही तुझे डांटे, स्वयं ही वचन के विरुद्ध। और यहाँ मसीह विरोधी अभिषिक्त है, जो कि आज के मूल वचन यीशु मसीह के विरुद्ध खड़ा है, और कहा, यह लिखा है, अंत के दिनों की ओर देखिए कि ये इतना समरूप होगा कि यदि हो सके तो चुनियों को भरमा दे। ओ, आप जानते हैं क्यों चुने हुए धोखा नहीं खाएंगे? क्योंकि वे वचन हैं, समझे? जैसे कि वो जीवन जो जड़ में था, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, वो वचन है और ये वचन के ही मौसम में है। ये ठीक बात है, जैसे कि यर्मिया जानता है, कोई बात नहीं कि हनानिया ने क्या कहा, वो जानता है कि वो कहाँ है, और बिल्कुल ऐसे ही मूसा ने किया और दूसरों ने भी, वो जान गया, कोई चिंता नहीं झूठे भविष्यवक्ता ने क्या कहा। वहाँ परमेश्वर का वचन था, वो लिखा हुआ था। यही कारण है कि मिकाया कह सकता है, ठीक है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। अहाब ने कहा, मैं अपने भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता हूँ, मेरा संगठन ठीक है, जब तक मैं शांति से लौटूं, इसे जेल में डाल दो, मैं फिर इससे निपटूंगा, इसे दुख की रोटी दो, इसे बाहर निकाल दो, इसे कोई संगति मत रखो, जब मैं शांति से वापस आऊंगा तब मैं इसे देखूंगा। मिकाया ने कहा, यदि तू वापस आ गया तो प्रभु मुझसे बोला ही नहीं। वो जानता था कि उसके पास यहोवा यूं कहता है और उसका दर्शन यहोवा यूं कहता है से बिल्कुल मेल खाता है, और किसी और समय के लिए नहीं, परंतु इसी समय के लिए है। आमीन, हालेलुया। निश्चित समय, निर्भय खड़े होकर प्रधान दूत से वाद विवाद करता है। ये कहावत है कि मूर्ख वहाँ भी घमंड से सर ऊंचा करके चलते हैं जहाँ स्वर्गदूत चलने से डरते हैं। ये सही बात है। यीशु ने कहा, यही कारण है कि चुने हुए धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वे ही वचन हैं। वो और कुछ हो ही नहीं सकते, वो और कुछ सुन ही नहीं सकते, वो और कुछ जानते ही नहीं। ये सत्य है। याद रखें, मूसा ने कभी भी अपने नकलचियों की चिंता ना की थी। क्या की थी? मूसा ने कहा, एक मिनट रुको, तुम जानते हो कि परमेश्वर ने मुझसे ये करने को कहा है। प्रभु की महिमा हो, मैं देखता हूँ कि तेरे लोग भी वही कार्य कर सकते हैं, इसलिए मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा, कि मैं तेरे साथ मिल जाऊंगा। ओ, ये तो भविष्यद्वक्ता जैसी बात नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जितनी दृढ़ता से खड़ा रह सकता था खड़ा रहा। वो ये अच्छी तरह से जानता था, जैसे भी हो परमेश्वर इसकी चिंता करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जानता था, इसलिए वो उनके साथ नहीं मिला। ओ नहीं, वो उनके साथ रहा, परंतु वो उनके संस्थाई मंडलियों को नहीं जाता था। वो बिल्कुल परमेश्वर के साथ रहा, उनके कार्य करने के कारण से वो उनके पीछे नहीं हो लिया था। जब उन्होंने एक काम किया, वो जुए ले आया तो वे भी जुए ले आए, वो लहू लाया तो वो भी लहू लाए, उसने बहुत कुछ कर दिखाया, वे भी उसकी बराबर नकल करते रहे, वो केवल शांत खड़ा रहा। वो भली प्रकार जानता था कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। अब आप समझ गए ना? आप दो और दो चार बनाते हैं, इस बात पर आप बहुत नहीं सोचते, इसलिए कि आप इसे समझते हैं। चुने हुए क्यों नहीं धोखा खाएंगे? सच्चे विश्वासी पहले से ठहराए हुए बीज हैं, उन्हें इस दिन स्थिर रहना ही है। ऐसे ही यीशु ने कहा, मेरे नाम से उस दिन बहुत आएंगे और कहेंगे कि प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से अशुद्ध आत्मा को नहीं निकाला? यीशु ने कहा, अंत के दिनों में जब समय समाप्त हो जाएगा और पुनरुत्थान होगा, बहुत से लोग आकर राज्य में शामिल होंगे। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। बहुत सी झाड़ियाँ आएंगी और गेहूं के साथ बैठेंगी, कहेंगे, प्रभु एक मिनट रुकिए, मैंने अन्य भाषाएं बोली, मैं चिल्लाया, मैंने आत्मा में नृत्य किया, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने अन्य अन्य भाषा बोली, मैंने ये सब कार्य किए। देखिए वो क्या कहेगा, तुम कुकर्म या पक्षपात करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। पक्षपात क्या है? किसी से पूछिए। वो बात जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए और आप नहीं करते, वो ये वचन जानते हैं, वैसे सुनते हैं, आप ये टेप सुन रहे हैं, आप ये संदेश सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि प्रभु परमेश्वर ऐसा कर रहा है और आप उसे देखकर पुष्टि करके सत्य बना रहे हैं और आप जानते हैं कि ये ऐसे ही स्पष्ट है जैसे कि बाहर सूर्य चमक रहा है। परंतु आप जो अपनी संस्थाओं को पकड़े हुए हैं और उन गलत बातों में फंसे हुए हैं, आप पक्षपात या कुकर्म करने वाले हो। ओ, मैंने बड़े बड़े अभियान किए थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसने कहा, मुझसे दूर हो जाओ तुम जो कुकर्म करने वाले, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मेरे ऊपर तो पवित्र आत्मा भी आया, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मैंने अन्य भाषाएं बोली, मैंने आत्मा में गाने गाए, मैंने ये किया, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं। ओ भाइयों बहनों, कैसी स्थिति है, ये तो भयानक समय है। हम कहाँ हैं? ये वचन अब जीवन में परिवर्तित हो रहा है। ध्यान दें, उसने कहा कि वे यही करेंगे। जी हाँ, ध्यान दें, तुम जो कुकर्म करने वालों, मेरे पास यहाँ पद लिखे रखे हैं, मुझे याद नहीं कि कहाँ लिखे हैं, मैंने काफी समय ले लिया है। एक मिनट, मैं जरा देख लूँ, देखें कि क्या था। मुझे मती साथी किस मिल गया है, पता नहीं मैंने कहा। कभी कभी मैं यादगार के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे ही प्रचार करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं वचन के कौन से पद से बता रहा हूँ। मती साथ 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अभिषिक्त किए हुए भविष्यवक्ता, ये ठीक है ना? क्या हम भविष्यवक्ता नहीं थे? क्या हम अभिषिक्त नहीं थे? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? आप ये कैसे कर सकते हैं और यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने को मना कर सकते हैं? ओह, देखिए आश्चर्य कितना धोखा भरा है। सही लक्ष्य तक पहुँचे फिर भटक गए, सही वचन तक पहुँचे और फिर पीछे हट गए। अब इस पर ध्यान दें, हम थोड़ी देर के लिए इसे लेंगे। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की भविष्यवक्ता होने के नाते? जी हाँ, मैं मती 24:24 के लिए कहा है, और तेरे नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकाली और तेरे नाम से बहुत से काम नहीं किए, और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। जब मैंने आपके सामने ये रखा था तो आपने इसे देखा और देखा कि ये सब कैसे होता है, ये वचन ही था, और अपनी संस्थाओं के कारण इसमें फंसे पड़े हैं। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि आपने कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं और आपने क्या क्या किया है, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता। बालाम ने कहा, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की और वो पूरी हुई, ये बिल्कुल ठीक है, परंतु जब वचन आया तो तूने अस्वीकार कर दिया। ओ मेरे भाइयों, धोखे वाले भाग को देखिए, सच्चे भविष्यवक्ता के साथ नहीं, परंतु वचन, सच्चे वचन के साथ, प्रमाणित वचन जो प्रकट हुआ। तुम कुकर्म करने वालों, शैतान ने हर युग में सच्चे वचन की नकल की। हम जानते हैं कि क्या हम नहीं जानते? ध्यान दें, बिल्कुल किनारे तक आकर और फिर छोड़ गए। यहाँ देखिए, इब्रानियों के 6 अध्याय में थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको इसके लिए पीछे भी बताया और आगे एक दो मिनट और। उसने कहा, यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे जो कि निकम्मे और श्रापित हैं, जिनका अंत उनका जलाया जाना है किनारे की रेखा पर, और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके, दूसरे शब्दों में आप देख चुके, आप इसे अपने मुंह में नहीं चख सकते, परंतु आप देख चुके हैं, आप जानते हैं कि ये सत्य था, आपको मालूम है ये सत्य है, स्वर्गीय वरदानों को चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, जैसे कि वो आप पर उतरा, परमेश्वर के उत्तम वचन को चखा, आपने देखा कि ये ठीक है, और पवित्र आत्मा आप पर उतरा खेत की खरपतवार पर, और फिर छोड़ गए और उसी मसीह का इनकार किया जिसने तुम्हें पवित्र किया, बुलाया और अपना अभिषेक तुम पर किया। फिर इस पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, ये क्षमा नहीं हो सकता, उनके लिए असंभव है कि वो सत्य को पहचाने, उनके लिए अनहोना है जो एक बार पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। झाड़ियों पर गिरा, देखिए, और यीशु के साथ हो लिए, और प्रभु मैं चल रहा हूँ, परंतु जब वचन के सामने आए तो फिर गए, पवित्र आत्मा के भागी हुए और वचन को चखा या देखा कि प्रकट हुआ, और तब उससे अलग हो गए। ये उनके लिए बिल्कुल अनहोना है जिन्होंने इसे देखा या इस्तकाए। ये वचन इस प्रकार कहता है अब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये नहीं। आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल असंभव है। पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है और आत्मा इसकी गवाही देता है। ध्यान दें, मैं आपको छोटा उदाहरण दूं। उन लोगों को देखिए जो मूसा की भविष्यवाणी के अनुसार आए थे, उस संगठन से बाहर आए और बहुत सी बातों से जो भविष्यवाणी के अनुसार थी, उन्होंने महान कार्य, आश्चर्यकर्म और इस प्रकार की चीजें देखी और उस अंदर जाने वाली सीमा रेखा तक आए। अब ली, यहाँ तुम्हारा नाम पुस्तक में आता है, देखा? ये आपने पक्का कर लिया है। और आप लोग जो यहाँ नहीं है परंतु टेलीफोन पर सुन रहे हैं, ये डॉक्टर ली वाइल जो यहाँ बैठे हैं, वो इस सात कलीसिया काल की पुस्तक की व्याकरण ठीक कर रहे हैं। और एक समस्या या एक प्रश्न आया कि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। इस विषय पर देखिए, इसने बहुत से सेवकों को परेशान कर दिया, परंतु उस पुस्तक की प्रतीक्षा करें। जब आपको पुस्तक मिल जाएगी तो आप समझ जाएंगे यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी ज्योति है, समझे? अब ध्यान दें, यदि आप इसे देखना भी नहीं चाहते तो आप अपना मुंह घुमा लेंगे और इसकी ओर देखेंगे भी नहीं। जैसे कि मेरी माँ कहा करती थी कि तुम शलगम से लहू नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें लहू होता ही नहीं है। ध्यान दें, ज्योति को आना ही है, ये अंधकार में नहीं है। ज्योति अंधकार के पास आती है और अंधकार उसे नहीं समझता। अब ध्यान दें, अभिषिक्त लोग आज के दिन में, जैसे कि मूसा इसराइल की संतान को निकाल लाया और जब उन्होंने महान राष्ट्र के विषय में सुना तो घबरा गए। इसराइल अंतर संस्थाई मंडली थी, उसके पास कोई भूमि नहीं थी, उसके कोई घर नहीं था, वो तो एक घर की ओर जा रहे थे। हमारे पास कोई गिरजा नहीं है, हम तो एक कलीसिया में जा रहे हैं जो कि पहलोटे की कलीसिया है, वो कलीसिया जो कि महिमा में है, न कि जो पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा है। वो कलीसिया जो महिमा में है, वे बुलाए गए लोग हैं जो पहले से अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं, वे अपने घर जा रहे हैं। और वे जब उस स्थान पर आए जहाँ से पार होना था, उन्होंने वचन पर संदेह किया और वापस आ गए। जबकि यहोशू और कालेब और वे वहाँ जाकर अंगूरों के गुच्छे लाए और उन्हें सिद्ध कर दिया कि वहाँ एक देश है, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा, ये एक दूध और शहद का उत्तम देश है। और वो वहाँ से सामान इस पार लाए कि उन्हें प्रमाणित कर दें। और उन्होंने उसे चखा और कहा, हम ये नहीं कर सकते। यद्यपि क्या हुआ, वे जंगल में ही नष्ट हो गए, वे वही रुक गए और अपने को संगठित कर लिया और वे सारे के सारे मारे गए। परंतु वे यहोशू और कालेब जो वहाँ से जाकर वापस आए थे, मूसा का रूपांतरण हो गया था। ये प्रतिछाया है कि कलीसिया प्रतीक्षा कर रही है और पुनरुत्थान, पुराने नियम का और नए नियम और उठाई गई देह। देखिए यहाँ तीन है, तीन को एक रेखा क्रम में रखना है, समझे? ऐसे ही विश्वासी और अविश्वासी, समझे? ध्यान दें कि वे कैसे कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। याद रहे, परमेश्वर ने उनका ये पाप कभी क्षमा नहीं किया। वे कैसे प्रवेश कर सकते थे? यदि वो आरंभ से ही कांटे थे तो वे अंत में भी कांटे ही थे। केवल पहले से ही चुने हुए देख सकते हैं। अब जरा और ध्यान दें। अंधकार युग से पहले, जैसे कि संत मार्टिन के दिनों में, जो कि भक्त मनुष्य था, कितनों ने कभी संत मार्टिन के लेख पढ़े हैं? आप में से बहुत सुने। हम एक बार गए कि संत मार्टिन के लेख प्राप्त करें, तो पादरी ने कहा, लेकिन वो तो मान्यता प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, वो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा था। पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि उसको तीसरे युग में रखें, समझे? देखिए, वो परमेश्वर का कैसा छोटा भक्त मनुष्य था जो कि चुना हुआ कहलाया। उसके माता पिता मूर्ति पूजक थे, उसके पिता एक सैनिक थे, इसलिए वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चला कि एक सैनिक बने। और उसने यही किया और उसने सदा विश्वास किया कि कहीं परमेश्वर है। एक जंगल का व्यक्ति देख सकता है कि परमेश्वर है। एक दिन वो नगर से निकल रहा था, वहाँ एक बूढ़ा भिखारी पड़ा हुआ, ठंड से दुखी दुहाई दे रहा था। वो कह रहा था कि मुझे कुछ दे दो कि मैं ओढ़ लूँ, नहीं तो मैं आज रात मर जाऊंगा। किसी ने कुछ नहीं किया और मार्टिन रुका और उसने एक और खड़े होकर कुछ देर ध्यान से देखा। किसी ने कुछ नहीं किया। उसके पास एक कोट था, यदि वो उस कोट को दे देता तो वो अपनी ड्यूटी पर था, वो ठंड से जम जाता। इसलिए उसने सोचा, यदि मैं इस कोट को उसके साथ बांट लूं तो हो सकता है हम दोनों जीवित बच जाएं। उसने अपना कोट लेकर तलवार से उसके दो हिस्से कर दिए और उसने अपने कोट से उस बूढ़े भिखारी को ढांप दिया। और किसी ने कहा, देखो ये संतरी कैसा अजीब सा दिख रहा है, देखो ये सैनिक कैसा बेढंगा दिख रहा है, आधा ही कोट पहन रखा है। दूसरी रात जब वो ड्यूटी से उतरा और अपने बिस्तर पर लेटा था तो वो उठ गया।
देखा कि कमरे में यीशु खड़े हैं और वही कपड़ा जो उसने ओढ़ाया था लपेटे खड़े हैं। वो उसी समय समझ गया कि जो तुमने मेरे इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया, मेरा अभिषेक वहाँ पड़ा है। वो परमेश्वर का महान सेवक था। गिरजे ने उसका ठट्टा उड़ाया, उसे तंग किया, उसे निकाल दिया और बहुत कुछ किया, परंतु वो परमेश्वर का भविष्य रखता था। जो उसने कहा घटित हुआ। उस युग में बहुत सौ ने उसका विश्वास किया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि शैतान कितने धोखेबाज है। एक दिन वो अपना अध्ययन कर रहा था, तभी शक्तिशाली दूत आया। सिर पर ताज था, सोने के जूते पहने थे, उसके कपड़े पर का फीता सोने का था और कहा, मार्टिन क्या तुम मुझे जानते हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और बचाने वाला हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया है, मुझे दंडवत कर मार्टिन। परंतु वो भविष्यद्वक्ता जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है और वो उसे देखता रहा। उसने कहा, मार्टिन मैं तुम्हें बचाने वाला यीशु मसीह हूँ, मुझे दंडवत करो। मार्टिन तुम मुझे नहीं जानते। मार्टिन उसे देखता रहा और वचन उसके मस्तिष्क में चलता रहा। उसने कहा, शैतान मुझसे दूर हो। उसने कहा, तेरे सिर पर ताज है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके संत उसे ताज पहनाएंगे जब युग समाप्त होगा। क्या ये पेंतिकोस्तल वाला धोखा नहीं था? भाइयों इस वचन पर ध्यान दें कि कहां काम आया। एक दिन और एक मठ में एक बूढ़ा संत था और कुछ नौजवान साधु थे और उनमें से एक चिड़चिड़ा था। इस पर ध्यान दें, यहां एक अच्छा दृष्टांत है। आज वो बाकी लोगों के ऊपर कुछ बनना चाहता था। वो अपने आप को उनसे बड़ा और अधिकारी बनना चाहता था और अपने को कुछ अधिक अच्छा और अलग दिखाना चाहता था। सदा दूसरे भाइयों से आशा करता कि वो उसे कुछ अलग समझें। चाहे जो भी था वो बहुत घमंडी था। वो समुद्र तट का अकेला चिकना पत्थर था, उससे कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। अब देखिए क्या हुआ। उसके पास तो कुछ विशेष होना चाहिए था, उसकी तो ऊंचे समाज से तुलना होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए उसने भविष्यवाणी की और कहा कि प्रभु ने मुझे भविष्यद्वक्ता भी बनाया है, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। वहाँ तो एक प्रमाणित भविष्यद्वक्ता संत मार्टिन था, वो जन्म से ही भविष्यद्वक्ता था। परंतु इस नवयुवक छोटे से साधु ने जो लगभग 20-25 वर्ष का आयु का था कहा, उसने कहा, प्रभु ने मुझे भविष्यद्वक्ता बनाया है और मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ। उसने कहा, आज रात प्रभु मुझे एक बहुत अच्छा वस्त्र देने जा रहा है, एक सफेद वस्त्र, और तुम्हारे बीच नियुक्त करेगा। तब तुम सब मेरे पास आओगे और मेरे से निर्देशन मांगोगे। आज से इसकी तुलना करें कि फिर मैं संगठन का अध्यक्ष होऊंगा, तब मैं तुम सब संतों की देखभाल करूंगा। और वैसा ही हुआ। उस रात ज्योति उस भवन पर आई। इस तरह संत मार्टिन लिखते हुए कहते हैं, इसे पढ़िए, ये सत्य है, ये इतिहास है। और ज्योति आई और सब ने उसे देखा और वो सबके बीच में सफेद वस्त्र पहने खड़ा था। उसने कहा, देखा मैंने क्या कहा था, परंतु ये तो वचन विरोधी था। और जब वो कॉलेज के अध्यक्ष के पास गया और उसने इस प्रकार से जांचा और कहा, पुत्र ये बात ठीक नहीं है। उसने कहा, केवल एक ही उपाय है और वो ये है, इसे जानने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। वैसे ये अलौकिक लगता है। पेंतिकोस्तल तो इसी को जड़ छुपा हुआ समझकर पकड़ लेते हैं और इसमें फंस जाते हैं। उसने कहा, आश्चर्यकर्म देखने में ठीक लग सकता है, परंतु ये वचन के साथ मेल नहीं खाता। हमारे पास तो ऐसा व्यक्ति अभिषेक क्यों हुआ भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम मार्टिन है, आओ उसके सामने चलो। उसने कहा, नहीं नहीं, मार्टिन को इससे क्या लेना देना। उसने कहा, जो भी हो तुम वहाँ चल रहे हो। और उन्होंने उसे जबरदस्ती हाथों से पकड़ा और उसे मार्टिन के सामने ले गए और वस्त्र गायब हो गया। देखा, यदि हो सकता चुनेवों को धोखा देता, वे उन्हें जानते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। ओ तुम कहते हो मेरी आवाज़ सुनो, ये उसका वचन है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा परंतु हर वचन से, समझे। चुने हुए ये जानते हैं, अज्ञात वचन अज्ञात आवाज़ के पीछे वे नहीं जाएंगे। पहले समय के लोगों के साथ यही हुआ और वे पीछे नहीं चले। वे जानते थे कि मार्टिन जो भविष्यद्वक्ता उस समय के लिए है परमेश्वर के वचन से प्रमाणित है, वो वचन को जानता है और वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। उसने ये भी कहा, जहाँ लोथ है या वचन उस समय में, वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। ये यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, मत्ती 24:28, मत्ती 24:24 से चार पद नीचे, यदि आप देखना चाहें। जहाँ पर लोथ है, जहाँ मन्ना है, वचन है, वहाँ उकाब जमा होंगे। अब मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ देखा कि क्या समय है, 12:07 या 8 हुए हैं। मैं इसको जल्द ही समाप्त करूंगा या फिर आज रात समाप्त करेंगे, आप क्या चाहेंगे? अभी सुबह या आज रात को? आज इस आराधना के बाद आप में से कितनों को घर जाना है? जरा हाथ उठाएं, देखें। ओ, अच्छा हो कि चालू रखें। मुझे अफसोस है कि बहुत लोग टेलीफोन पर बाहर रुके हुए हैं, परंतु मैं जल्द ही करूंगा। मेरे लिए तो ये आपके पैसों से अधिक मूल्यवान है, आपके पैसे नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं, ये वचन है। देखा, जहाँ पर लोथ है उकाब वहाँ इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ है, जहाँ मारा हुआ है, वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। जहाँ ताजा मांस है, उस समय का वचन, वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। परंतु जब वो सड़ जाएगा तो वहाँ गिद्ध जमा होंगे। जी हाँ, आप समझे मेरा क्या तात्पर्य है? जब कोई मारा जाता है तब उकाब आते हैं, परंतु जब वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है तब गिद्ध जमा होते हैं। उकाबों को उससे कोई लेना देना नहीं। देखा, यीशु ने कहा जहाँ लोथ है, जहाँ मन्ना गिरता है, रात में जब ताजा मन्ना गिरता है तब वहाँ उकाब जमा होते हैं। वो मन्ना जो उस दिन के लिए होता है, समझे? परंतु जब वो सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तब गिद्ध आते हैं। जब तक वो सड़ता नहीं उन्हें गंध ही नहीं आती। कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने वहाँ खड़े होकर कहा कि हे यरूशलम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को पथरवाह करती है। ध्यान दें, व्यक्तिगत सर्वनाम। यरूशलम, यरूशलम, कितनी बार मैंने चाहा। वो कौन था? मैंने कितनी बार तुझे जमा करना चाहा, जैसे मुर्गी बच्चों को छिपा लेती है। तुमने हर भविष्यद्वक्ता को मार डाला। मैंने जिसको भी यरूशलम की कलीसिया के पास भेजा, वो यरूशलम जो कि पृथ्वी पर नहीं, हम उस यरूशलम के हैं जो ऊपर का है, जहाँ से वचन चुने हुओं के लिए आता है। पुराना यरूशलम नहीं जो नष्ट हो गया, नया यरूशलम जो नष्ट नहीं हो सकता। पुराना यरूशलम नहीं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, नया यरूशलम जिसे परमेश्वर ने बनाया। समझे? वो वचन जो वहाँ का है वो प्रकट हो रहा है। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, मैं जाऊँगा कि उन्हें तुम्हारे लिए तैयार करूँ। सृष्टिकर्ता सोने की सड़कें वगैरह बना रहा है। ये वो है जो नष्ट नहीं होता। यरूशलम, यरूशलम, मैंने समय के आरंभ से कितनी बार चाहा। कोई तीसरा और व्यक्ति नहीं, परंतु मैं तुझे छिपा लेता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छिपा लेती है, परंतु तूने नहीं चाहा, पर अब तेरा समय आ गया है। समझे? जहाँ लोथ है वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे, परंतु जब लोथ के सड़ जाने के बाद तब गिद्ध जमा होंगे। समझे? ध्यान दें, मूसा ने कभी भी परमेश्वर के बच्चों को नहीं दिया। मूसा एक उकाब था, उसने कभी भी परमेश्वर के बच्चों को नू का बचा हुआ नहीं दिया। उसके पास ताजा परमेश्वर का वचन था। प्रभु परमेश्वर मुझे जंगल में मिला और अपना वचन प्रमाणित किया और मुझे यहाँ आपको बाहर निकालने के लिए भेजा है। तब एक नकल करने वाला आया और इसका नाटक किया। समझे? परंतु उसके पास समय का वचन था, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम, जिसके पास प्रतिज्ञा का वचन था, उससे कहा तेरा वंश एक अनजाने देश में 400 वर्ष तक परदेशी बनकर रहेगा, परंतु मैं उनकी सुधि लूंगा और अपने बलवंत हाथों से बाहर निकाल लाऊंगा। मूसा ने कहा अब यहोवा परमेश्वर मुझसे बोलेगा और मुझे दिखाएगा, और उसने मुझे बता दिया है कि क्या करना है, और मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने कहा मैं हूँ, उसने मुझे भेजा है। मैं हूँ, मैं था या मैं होऊंगा नहीं, मैं हूँ वर्तमान काल, वचन अब। वचन था नहीं या वचन जो आएगा, वचन जो अब है। देखिए, आप समझ गए ना? मैं हूँ, मैं हूँ वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये ठीक है ना? मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपना भविष्यद्वक्ता करके भेजा है इसका समर्थन के लिए कि ये सत्य है। मैं इस वचन का उत्तर हूँ, मैं हूँ। इसलिए जब वो आता है और करता है, और जब उसने ये किया तो फ्रॉन बोला, अरे हमारे पास तो बहुत से लड़के हैं, हमारे झुंड में हैं, वो भी ये कर सकते हैं, दूसरों का रूप धरने वाले। यीशु ने कहा यही अंत के दिनों में फिर से होगा। देखिए, वो भी यही दावा करेंगे। ध्यान दें, पहले कौन आया? ध्यान दें, कौन वचन के साथ बना रहा? यही है जिससे कि आप जान सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं, हम देखते हैं मूसा ने जो नूह के समय था वो नहीं दिया कि हम एक नाव बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वचन नूह ने एक दिन नाव बनाई थी। कोई भी गिद्ध इसको नहीं सुन रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं। ये प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है। ध्यान दें, उसका संदेश जो उसे परमेश्वर से मिला था, उसके पास सत्य पहले से ठहरा हुआ परमेश्वर का वचन उस समय के लिए था। ना ही यीशु ने मूसा का छोड़ा हुआ उन्हें परोसा। मूसा के पास उस समय का वचन था, परंतु मूसा भविष्यवक्ता था, यहाँ परमेश्वर स्वयं ही है। देखा, उसने मूसा का वचन उन्हें नहीं दिया, परंतु उन संगठनों में उन गिद्धों को देखें जो उसे ही खा रहे थे। हम जानते हैं हमारे पास मूसा है, हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते, क्योंकि मूसा ने मेरे ही विषय में कहा है। ओ देखा, जहाँ पर लोत है उकाब जमा होंगे। उकाब, ताजा मारा हुआ वचन, वो वचन जो कि जी उठा और बदल गया और प्रकट हुआ और अपने बालकों को भोजन दिया। अब वो पुरानी लोत जो कि वहाँ सैकड़ों वर्षों से वहाँ पड़ी थी वहीं रहेगी, आज भी वैसे ही है। लूथर के पास प्रायश्चित का संदेश था, परंतु तुम लूथरन शिखरो, बैप्टिस्ट के पास संदेश था, परंतु तुम बैप्टिस्ट शिखरो, समझे? पेंतिकोस्तलों के पास संदेश था, वापस आ रहे हैं पेंतिकोस्तल शिखरो, परंतु जहां लोथ है वहां उकाब इकट्ठे होंगे। याद रखिए, उन दिनों में आप लूथरन को कैथोलिक लोथ नहीं खिला सकते थे, पर आप खिला सकते हैं। नहीं श्रीमान, उनके पास ताजा भोजन था, वो कलीसियाई युग था। आप मेथोडिस्टों को लूथरन का संदेश नहीं खिला सकते थे। ओ नहीं, वो उस सड़ी लोथ को नहीं जान चाहते थे। देखिए, जीवन उसमें से समाप्त हो चुका था और किसी दूसरे में चला गया था। वो पुराना डंठल है जो मर चुका, जीवन आगे बढ़ रहा है। ना ही आप यीशु मसीह की दुल्हन को पेंतिकोस्तलवाद खिला सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कीड़े पड़े हुए संगठन बेकार, नहीं नहीं, प्रतिज्ञा ये है, इससे पहले कि भयानक दिन आएगा मैं तुम्हारे पास एली भविष्यवक्ता को भेजूंगा, वो बालकों के हृदय को उनके पितरों के विश्वास की ओर फिर से फेरेगा। बाइबल में यही सारी प्रतिज्ञा की गई है कि मैं ये करूंगा और उनका वहाँ जमा होंगे, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा, समझे? यीशु ने कभी ये प्रयास नहीं किया, परंतु जब यीशु आया तो उसे गिद्धों का झुंड मिला। हमारे पास मूसा और व्यवस्था है। देखा, पहले जब वो मारा गया था तब तो इसको खाना और देना उचित था, ये तब तो ठीक था, परंतु मूसा के द्वारा स्वयं ये भविष्यवाणी हुई जिसने बलिदान चढ़ाया। उसने कहा, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे भाइयों में से एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा, और ऐसा होगा कि जो कोई इस भविष्यवक्ता की जो वो कहेगा उससे लिपटा नहीं रहेगा, वो लोगों के बीच में से काटा जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। देखिए कि कैसे लगभग 600 विभिन्न भविष्यवाणियां जो पुराने नियम की थी यीशु मसीह में पूरी हुई। उन्होंने मेरे हाथ पैरों को छेदा है, मैं भूल गया कि कितनी अंतिम 7-8 घंटों में उसके जीवन में पूरी हुई। उन सब भविष्यवक्ताओं ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। यदि मैं भविष्यवाणी करूं कि अब से एक वर्ष के अंदर कोई घटना होगी तो हो सकता है 20% संभावना हो कि वो हो जाए, चाहे वो सही या गलत है। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं कि ये होगा और ये ना कहूं कि कब, तब प्रतिशत घट जाता है। यदि मैं भविष्यवाणी करूं कि कब घटित होगा तो मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान बचता है। यदि मैं भविष्यवाणी करूं कि किस स्थान पर होगा तो संभावना और कम बचती है। यदि मैं भविष्यवाणी करूं कि कौन होगा, तब तो 1/100,000 ही स्थान बचता है कि वो वैसा ही हो, यदि वो सत्य नहीं है तो। हालेलुया, हर एक वचन जो मसीह के विषय में लिखा, शब्द शब्द मसीह में पूरा हुआ। यहाँ तक कि एक दिन पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए वो वाक्य के बीच में रुक गया और कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं और छुटकारे, और वो वाक्य के बीच में रुक गया क्योंकि बाकी इसके दूसरी आमद के लिए था। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। देखा, वो उस समय का वचन था जो उन्हें उस समय खिला रहा था। मूसा ने उनसे सत्य कहा, परंतु आप देखें, उन्होंने उसमें से हमेशा संगठन उन गिद्धों के लिए बनाए। उकाबों के खाने के बाद जब वो घर जा चुके थे तो उसमें से कुछ बच गया था, तब वो किसी और बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। वचन, वे कहते हैं उसे तो आना है, हमने कल हिरण खाया था और कल भीड़ मिलेगी। देखिए, मेरा क्या अर्थ है, वो पुरानी हिरण की लोथ पड़ी है बेकार, परंतु आज हमारे लिए भीड़ आ रही है, ये कहा है। देखिए, मेरा क्या अर्थ है, स्वर्गदूतों का भोजन, वो लोग जो एक दिन मन्ना खाते हैं, यदि वे उसे दूसरे दिन को रखने का प्रयत्न करें तो वो खराब हो जाता है। क्या आप इन सब प्रतीकों को नहीं देख रहे हैं कि कितने सही हैं? अब भी वैसा ही है। ध्यान दें, यीशु के समय के गिद्ध भी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो पुरानी लोथ से अभिषिक्त थे, क्या ये ठीक है? यीशु ने कहा वे शैतान को निकालते थे, और याद रखें कि उनके पास उन दिनों में भविष्यवक्ता थे। कैफा महायाजक ने भी भविष्यवाणी की। कितने इस बात को जानते हैं कि कैफा ने भविष्यवाणी की? झाड़ झंकाड़ की खेत में स्थिति देखें, उसको भी उसी अभिषेक से सींचा गया। बाइबल ने क्यों कहा कि उसने भविष्यवाणी की? क्योंकि वो उस वर्ष का महायाजक था। एक पुराना गिद्ध कबाड़ी, एक झाड़ी कटीली गेहूं के बीच बैठी है, परंतु परमेश्वर की सच्ची आत्मा उसके ऊपर थी। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था कि प्रचार करे, भविष्यवाणी करे, होने वाली बात को पहले से बताए और उस प्रमाणित वचन को जो उस समय के लिए था उसका इनकार करे और क्रूस पर चढ़ाए। ओ भाई, अनुग्रह हो। अब हम इन बातों को और कितनी देर तक कहते रहें और कितनी बार पवित्र वचन में जाएं? मैं जल्दी करूंगा। मेरे पास पवित्र वचन के लगभग 10 पन्ने और हैं। वो कैसे सब बातों को सिद्ध कर रहे हैं? सूर्य धर्मी और अधर्मी दोनों पर एक सा चमकता है। यीशु ने इसे सिद्ध करने के लिए कहा, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? वे दुष्ट आत्माएं निकाला करते थे, वे भविष्यवाणी किया करते थे, क्या ये ठीक है? परंतु उस समय के वचन को न पहचाना। क्यों? क्योंकि वो उनसे संबंधित नहीं था। अब मत्ती 24:24 को लें। झूठे मसीही, झूठे अभिषेक उठ खड़े होंगे और वे झूठे भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करेंगे, देखा, और चुनेवों को धोखा देंगे, यदि हो सकता था तो। अब आप समझे? संतानों पर ध्यान दें। संतानें कौन होती हैं? यदि मैं परमेश्वर के वचन से शैतान को निकालता हूँ, वो परमेश्वर का वचन था, तो फिर तुम्हारे संगठनों की संतान किसकी सहायता से उन्हें बाहर निकालते हैं? अब हम जानते हैं कि केवल परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। बलवान व्यक्ति को उससे अधिक बलवान होना है जो उस घर में है। उनके पास ये करने की शक्ति थी। आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि अंत के दिनों में जो मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा वो चिन्ह और आश्चर्यकर्म करेगा और जो पृथ्वी पर रहते हैं उन्हें धोखा देगा और उन सब मसीहों को और सब जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं है। मत्ती 24:24 का उत्तर है, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में जगत की सृष्टि से पहले नहीं लिखे गए। वो जीवन जो मूल संतरे के पेड़ की जड़ में था, वो सारे फलों में से और सब में से गुजरेगा और पेड़ के सबसे ऊपर की फुनकी पर फल देगा जो इन सब संगठनों और सांटी गई डालियों के ऊपर होगा। समझे आप? मैं जल्दी करूंगा। वो बलवान पुरुष, अब दाऊद, याद करें, वो ईमानदार सच्चा था और परमेश्वर का कार्य करना चाहता था। वो इसके लिए करने के लिए ठहराया नहीं गया था, वे अभिषिक्त लोग। परंतु यीशु ने कहा, उनके मत सिद्धांतों की शिक्षा का अर्थ मनुष्य द्वारा है, वचन का, देखिए, परमेश्वर का वचन नहीं, ना ही उसका प्रमाणित वचन। वो ऐतिहासिक मसीह की शिक्षा दे रहे थे, कुछ कुछ जो था, और बाइबल कहती है वो है, मैं हूँ, मैं था नहीं या होऊंगा, मैं अभी हूँ। वो वचन जो अभी आ रहा है, वो आरंभ में था, वो पत्तियों में था, वो डंठल में था, वो बाल के छिलकों में था, परंतु अब वो बीज में है। अब आप वापस जाकर फिर से जीवित होना चाहते हैं? क्या हो यदि जीवन वहाँ से समाप्त हो चुका हो? आप सोचते हैं वहाँ जीवन आपसे बातें करेगा? आप उस बाल के छिलके से वापस जाकर जो सूख गया है वहाँ वापस जाकर उसमें जीवित रह सकेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। उनके लिए जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और वचन के साथ नहीं चले जो कि पूरा हुआ, उनके लिए अनहोना है। वे मर गए, समाप्त हो गए और वे ऊंट कटारे जो निकम्मे ठहरे, जिनका अंत जलाया जाना है। ये ठीक है ना? अब मैं बहुत शीघ्र करूंगा जितना हो सकेगा। अब आप वचन पर ध्यान दें। ऐतिहासिक परमेश्वर की शिक्षा, देखा, जैसा कि बीते काल में जीने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वैसली ने कहा, ऐसा ऐसा कहा था, उसने ये कहा था। आप आज के वचन को अस्वीकार कर रहे हैं, वो मन्ना जो आज के लिए प्रमाणित है। वे अपनी पुराना लूथरन बैप्टिस्ट पेंती कौशलों का दाखरस हमारी नई मशकों में भरना चाह रहे हैं, वो काम नहीं करती और हमारा नया दाखरस उनकी पुरानी मशकों में नहीं चलता। यदि वे इस नए दाखरस को अपने संगठनों में भरने की कोशिश करेंगे तो उनकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। वे ऐसा नहीं कर सकते, वे तो फाड़ देंगे। अब भाइयों, मैंने परमेश्वर के वचन को वचन द्वारा सिद्ध होते देखा है। अब डॉक्टर, यहाँ देखिए, यदि हम इसे नहीं ले सकते, नहीं, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नया है, हम इसको यहाँ नहीं ले सकते, हमें कोई सरोकार नहीं, आप जो चाहे करते रहें, आप समझते हैं, देखिए, ये नहीं चलेगा, ये फाड़ देगा। आप नए कपड़े का ठिकड़ पुराने कपड़े पर नहीं लगा सकते और उसे और फाड़ लेंगे, समझे? क्या यीशु ने ऐसा नहीं कहा? आप नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रख सकते, वो उसे फाड़ देती है। नए दाखरस में जीवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, बहुत जल्दी हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 16:13-14 पर ध्यान दें, यदि आप इसे लिखना चाहे तो। मेरे पास समय नहीं है कि इसमें मैं जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप इसे निश्चित कर लें और देखें। अब ध्यान दें, ये छठे और सातवें कटोरे के बीच में बोल रहा है। अब हम थोड़ी देर में समाप्त कर देंगे, हो सके तो कुछ मिनट और थोड़ा रुकें। अब बंद कर रहे हैं, ध्यान दें। अब प्रकाशित वाक्य 16:13-14, छठे और सातवें कटोरे के बीच में तीन अशुद्ध आत्माएं मेंढकों जैसी, क्या आपने ध्यान दिया? किसी के मुख से निकली। अब जरा जल्दी ध्यान दें, आप तैयार हैं? कहिए आमीन। आत्माओं की त्रियेकता। अब संगठनों वाले भाइयों, थोड़ी देर शांत बैठें, एक मिनट। उठकर यहाँ से बाहर ना जाएं। आप जो टेलीफोन रेडियो पर हैं, अपने टेप रिकॉर्डर को बंद ना करें। एक मिनट शांत बैठें और सुनें। आप परमेश्वर से उत्पन्न हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मेंढकों की त्रियेकता। मेंढक वो जानवर है जो पीछे की ओर देखता है। वो वहाँ नहीं देखता जहाँ जा रहा है, वो हमेशा देखता है कि कहाँ से आ रहा है, समझे? आप देख सकते हैं कि त्रियेकतावाद का जन्म कहाँ हुआ था। याद रहे, तीन अशुद्ध आत्माएं, व्यक्तिगत आत्माएं। क्या आप ये समझ रहे हैं? ध्यान दें, वे पीछे निश्चिंत सभा की ओर देखते हैं, जहां पर ये त्रियेकता का सिद्धांत आरंभ हुआ था। बाइबल में नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। वे पीछे निश्चिंत सभा जो निसिया रोम में हुई थी, जहां त्रियेकता उत्पन्न हुई थी। ध्यान दें, वे कहां से आते हैं? ध्यान दें, मेंढकों की त्रियेकता पुरानी त्रियेकता से आई, जिसने नई त्रियेकता को जन्म दिया, उनकी माता। ये कहां से आई? त्रियेकता, बड़ा अजगर, देखा वो पशु, और वो झूठा भविष्यद्वक्ता, एक नई त्रियेकता। ये तीनों मेंढक कहां से आए? ये कब हुआ? ध्यान दें, ये हमेशा से थे, परंतु ये छठे और सातवें कटोरे के बीच तक प्रकट नहीं हुए। मोहरों के खुलने के थोड़े पहले ये प्रकट हुए। सातवें दूत के संदेश में परमेश्वर के भेद प्रकट होने थे। ये सारी त्रियेकता वाली बातें, गलत बपतिस्मे और हर बात प्रकट होनी थी। सत्य को देखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, और ऐसा न सोचे कि कोई मनुष्य इन बातों को कहने का प्रयत्न कर रहा है। मैं अनुभव करता हूँ कि आत्मा इस बात से प्रसन्न नहीं, आप समझे? भाइयों, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रभु के दूत के द्वारा बोल रहा हूँ जो यहाँ तंबू में है। ये बिल्कुल सही है। त्रियेकता पर ध्यान दें, वो अजगर, आप में से कितने जानते हैं अजगर क्या था? ये रोम था, और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बच्चा जने उसे निगल जाए, ये ठीक है? बाइबल में पशु का क्या अर्थ है? शक्ति, ठीक है, झूठा नबी, एक झूठा भविष्यद्वक्ता, एक झूठा अभिषिक्त किया हुआ, देखा कहाँ से आरंभ हुआ? ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, एक वचन, झूठा भविष्यद्वक्ता, पहला पोप, और वहाँ से वो वेश्या और वेश्याओं की माता और सारी बातें। झूठी त्रियेकता आरंभ के दिनों में नहीं थी, और आरंभ के दिनों में प्रकट भी नहीं हुई, ये साथ साथ उसी में चलती रही। परंतु जब सातों मोहरे खुली तो उन भेदों को खोल दिया, तब जब ये तीनों मेंढकों के रूप में तीनों अशुद्ध आत्मा आई और त्रियेकता के रूप में उस सत्य के विरुद्ध में प्रकट हुई। देखा, देखिए ये कहाँ से आई और कहाँ जा रही है? एक्यूमेनिकल संगठनों के गठर में जो भी हैं, वे सब भाई हैं, एक सी आत्माएं, एक ही चीज। और ध्यान दें, बहुत ही धोखेबाज आश्चर्यकर्म करते हैं। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी के देवताओं में जाती हैं, आश्चर्यकर्म करती हैं, ताकि उनको अंतिम दिनों में धोखा दे दें और ऐसा करने में सफल हो जाएं। परमेश्वर ने ऐसी दुष्ट आत्माओं के विषय में क्या कहा है? उस आत्मा ने कहा, मैं नीचे जाकर और भविष्यद्वक्ताओं के अंदर मुंह के द्वारा उनमें झूठ बुलवाऊंगी कि वे झूठी भविष्यवाणी करें, ताकि आहाब बाहर आए और वो वहाँ नष्ट हो जाए। परमेश्वर ने कहा, जा, तू सफल होगी, तू उनसे विश्वास करवा लेगी। वे आरंभ से ही उस वचन पर नहीं है, देखा, जा, तू उनको राजी कर लेगी। जब तू उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं में समाएगी तो तू ही होगी जो ऐसा करेगी। क्योंकि वो उन पर ही विश्वास करता है और वो वचन के विषय में कुछ नहीं जानता और न ही वो सीखने का प्रयत्न करता है। वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो आरंभ से ही ऊंट कटारा है। देखिया, तू सफल होगी। इन पीछे देखने वाले झूठे मेंढकों को देखें। क्यों आप जानते हैं उन्होंने वहाँ पीछे निसिया में क्या कहा? मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि उन्होंने निसिया में किस विषय में कहा। मैं वो कह रहा हूँ जो उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने कहा है। क्या हो सकता है, क्या था, क्या होगा? नहीं, क्योंकि वो तो मैं हूँ है, समझे? ओ, उस झूठे को देखिए, ध्यान दीजिए, वे कहाँ से आते हैं? अब ध्यान पूर्वक सुने। सात मोहरों के खुलने के बाद जिससे ये भेद प्रकट हुए, हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि त्रिएकता क्या है। देखिए, कहाँ पर ये त्रिएकता कही गई? जहाँ तक बाइबल का प्रश्न है, वहाँ तो त्रिएकता शब्द तक नहीं बोला गया। तीन परमेश्वर कहाँ हो सकते हैं जहाँ कि हम तीन परमेश्वरों की आराधना करें और मूर्ति पूजक न कहलाएं? वे कैसे अलग हो सकते हैं जबकि उसने कहा मैं और पिता एक हैं? जब तक तुम ये विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे। देखा, अपना अविश्वास, पाप अविश्वास है, तुम अपने अविश्वास में मरोगे। तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कहते हो मैं कहाँ से आया हूँ? ओ, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? मैं स्वर्ग का गुलाब हूँ, भोर का चमकता तारा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है? मैं वही हूँ जो मूसा से जलती हुई झाड़ी में बोला, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ और भोर का चमकता तारा। मैं शहरों का गुलाब हूँ। ओ, तुम क्या कहते हो कि मैं कहाँ से आया? ओ, क्या तुम मेरे पिता को जानते हो या क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? आमीन। मैं अल्फा ओमेगा हूँ, अंत से ही आरंभ हूँ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि हूँ और यीशु उसका नाम है। ठीक है, कोई त्रिएकता नहीं। नहीं श्रीमान, ये झूठी बात है। सात मोहरे उन भेदों को खोल रही हैं। वो भेद समाप्त हो चुके हैं, ये दिखाता है। मोहरे खुल चुकी हैं, हर बात प्रकट हो चुकी है, सच्चाई को स्पष्ट कर दिया गया है, जिसको मोहरों ने संगठनों और कलीसियाओं से वर्षों से छिपा रखा था। प्रकाशित वाक्य सात की वो बड़ी वेश्या, वो कौन थी? वो वेश्याओं की माता भी थी। देखा, अब आप उन्हें गिद्ध कहें? आप कहते हैं भाई बर्नम, ये ठीक बात है, परंतु याद रहे, गिद्ध एक पक्षी है, वो भी उड़ने के लिए अभिषिक्त है। ये दोनों आत्माएं इतनी मिलती हुई होंगी कि यदि हो सके तो चुनावों को भी भरमा दें। एक गिद्ध भी इतना बड़ा होता है जितना उकाब होता है, वो भी उकाब की तरह उड़ सकता है, और वो उड़ने या प्रचार या भविष्यवाणी करने के लिए अभिषिक्त होता है, ऐसे ही जैसे उकाब, परंतु वो उकाब की बराबरी ऊंचाई में नहीं कर सकता। नहीं नहीं, यदि वो प्रयत्न करे कि उसकी बराबरी करे तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। जी हाँ श्रीमान, वो उकाब की बराबरी नहीं कर सकता। ओ, वो कह सकता है कि मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मैं पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, यीशु मसीह उसका पुत्र और वगैरह वगैरह पर विश्वास करता हूँ। ओ, बिल्कुल वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु उसके विषय में क्या है कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। देखा, उकाब एक विशेष प्रकार की बनी चिड़िया है। इस पृथ्वी पर उसके समान और कोई नहीं है, समझे? यदि बाज उससे बराबरी करना चाहे या कोई और चिड़िया, तो वो विघटित हो जाएगी, उसकी मूर्खता अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। जब वो नई दाखरस को पुरानी मशकों में भरने की कोशिश करेगा तो वो उसे फाड़ देगा। देखिए, वो उसे फाड़ देगा और उसे नष्ट कर देगा। वो ऐसा बना ही नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसका शरीर इस प्रकार का बना ही नहीं है कि उस ढांचे में ठहर सके। जब वो उस मार क्षेत्र में आएगा, और यदि वो पहले से नियुक्त ठहराया हुआ जन्मजात उकाब नहीं है, तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, पंख उसके डैनों से उखड़ जाएंगे और वो अवश्य ही पृथ्वी पर आ पड़ेगा। वो उकाब की बराबरी ऊंचाई में नहीं कर सकता। यदि उसने कोशिश की तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाएगी। ये ठीक बात है, आप नहीं कर सकते। क्यों? वो उकाब की तरह देख ही नहीं सकता। इससे क्या लाभ कि बहुत ऊंचा कूदने के बाद वो ये जान न सके कि ऊंचाई में वो कहाँ है? और फिर भी यदि कोशिश करके वो ऊंचाई उकाब की नकल करना चाहे तो अंधा हो जाता है और नहीं जान पाता कि उसे क्या करना है। ये सच है, वो चिल्लाता चीखता और शोर मचाता रहता है, और वो उससे कुछ शब्द बोल पाता है और तब उसकी अज्ञानता प्रकट हो जाती है। उससे आप यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में बात कीजिए या कि वो कल आज और सदा तक एक सा है और इस प्रकार की बातें उसे बताएं। क्यों? बस एक मिनट की प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। जी हाँ, उसके पंख झड़ने लगेंगे। देखिए, उसने वो बहुत कुछ कूदा और भविष्यवाणी की और दूसरी आत्माएं निकाली और अन्य अन्य भाषा बोली, चीखा, चिल्लाया, फर्श पर इधर उधर दौड़ता रहा, परंतु उस पर चलने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों? वो क्या है? ये प्रकट हो जाएगा। जी हाँ, वो नियुक्त किया और अभिषेक किया हुआ है। वो उड़ सकता है, वो अपने को संभालता हुआ ऊंचा जा सकता है, पर अधिक नहीं। देखिए, वो लोथ खा सकता है परंतु ताजा मांस नहीं खा सकता जो कि सिंहासन से आता है। वो अंधा है, वो बहुत कुछ कर लेता है परंतु ये नहीं जानता कि उसने किस विषय में ये किया है। देखिए, वही एक आत्मा उस पर आया, जैसे कि वर्षा गेहूं पर हुई कि दाने आए, पर वो तो आरंभ से ही गेहूं नहीं है, वो फट जाता है। ओ, मैं और अधिक नहीं ले सकता। नहीं श्रीमान, मैं जानता हूँ, डॉक्टर जोन्स ने कहा है। ठीक है, आगे चलते रहिए। देखा, यदि आप चाहते तो चलते रहिए। ध्यान दीजिए, वो इस प्रकार ना ही जन्मा या बना है या पहले से चुना गया है कि वो इस प्रकार की चिड़िया बने। वो हो सकता है वो एक नींबू हो जो संतरे के पेड़ पे बढ़ रहा हो, परंतु वो जड़ों से कभी नहीं आया। वो कुछ ऐसा है जो कि मिलाया गया हो। और जब वे अपने संगठनों में अधिक ऊपर चले जाते हैं, जिससे कि वह परमेश्वर के पहले से ठहराए गए वचन को देख सके जो कि न्याय प्रमाणित है, तब वो उनकी अज्ञानता मालूम हो जाती है। ओ, वो चीज जो सिर के ऊपर प्रभा मंडल प्रकाश है, वो उसका कोई अर्थ नहीं। देखा, प्रकट हो गया। वो इतनी दूर तक देखने के लिए बना ही नहीं, वो तो केवल वहीं तक देख सकता है जहाँ तक कि उसके संगठनों का चश्मा उसे देखने दे, परंतु उसके बाद तो वो चमगादड़ की तरह अंधा हो जाता है, तब उसकी अज्ञानता प्रकट हो जाती है। देखा, यही वो स्थान है जहाँ सच्चा उकाब खाने के लिए तैयार बैठता है। जी हाँ श्रीमान, जहाँ पर सच्चे चुने हुए उकाब देखते हैं कि वो क्या है। जब वो उस वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, तभी ये जान जाते हैं कि ये संगठन का गिद्ध है। क्यों? वो क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि देखिए, वो क्या खा रहा है? वो संगठनों के सड़े मांस को खा रहा है। वो उसके शरीर को आत्मिक नहीं बनाएगा, वो उसको आत्मिक रूप से ठीक नहीं बैठा पाएगा कि उसको संगठनों के मतभेद से ऊपर उठा दे। देखा, देखिए, उसे केवल सड़ा हुआ पदार्थ खिलाया गया है, उसका शरीर उसी के द्वारा बना है। वो वहाँ ऊंचाई पर जा ही नहीं सकता जहाँ ताजा मांस उस उकाब को ले जाता है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखा, ये मती 24:24 को पूरा करता है। वो उछाल मार रहा है, हवा में उड़ रहा है, अपने पंखों को मार रहा है, परंतु वो अधिक ऊंचा नहीं जा सकता। समझे? ये ठीक है। देखिए, वो अधिक ऊंचा नहीं जा सकता कि वो ताजा मन्ना प्राप्त करे। वो पुराना मन्ना जो भूमि पर पड़ा हुआ है खाता है। वो पुराने मरे हुए खरगोश जो सप्ताह पहले और महीने पहले या 40 वर्ष पीछे की गंध है, वो उसे खा सकता है। उसे घूरता रहता है और शोर मचाता और चिल्लाता और लेकर उछलता और दूसरे उकाबों की तरह उड़ता है। वो भी दूसरे पक्षियों की तरह अभिषिक्त है। एक बाल जो उकाब का एक प्रकार है, हम जानते हैं, वो ठीक है, परंतु वो मूल उकाब की बराबरी नहीं कर सकता। देखा, वो भी श्रीमान ऐसा नहीं कर सकता। उसका भी शरीर ऐसा नहीं बना, वो दूसरे प्रकार की लोथ खाता है। वो भी ताजा मन्ना नहीं खाएगा। वो कुछ ऐसा है कि लूथर ने कहा, वेस्ली ने कहा, या किसी किसी डॉक्टर ने कहा, वो भी यीशु ने इस समय के लिए क्या कहा, इस पर नहीं आएगा। अब हम बंद करें। अभिषिक्त किए हुए मसीह अंत के दिनों में, परंतु झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता। ध्यान दें, कितनी चौंकाने वाली बात है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी तुलना करें। हमारे पास अब समय नहीं है। मती 24:24 को दूसरे तीमोथियस 3:8 के साथ पढ़ें। मती 24:24 में कहा है कि अंत के दिनों में झूठे मसीही और अभिषिक्त किए हुए झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और चिन्ह और आश्चर्यकर्म दिखाएंगे, बिल्कुल सच्चों की तरह, चुनौतियों को लगभग धोखा सा ही दे देंगे। अब ध्यान दें, ये यीशु बोल रहा था और यहाँ उसके पीछे पीछे पौलुस आता है और कहता है कि अंत के दिनों में धार्मिक लोग आएंगे और भक्ति का भेष धरेंगे और छिछोरियों स्त्रियों को संसारिक अभिलाषाओं से अगवा करेंगे। और वे आश्चर्य से कहते हैं, आपने ये बात उन स्त्रियों को क्यों ली? ओ, उनको तो ये दिखाई नहीं देता। छिछोरी स्त्रियाँ जो कि अभिलाषाओं से दबी हैं और इस प्रकार की बातों से दूर हैं। यन्नेस और यम्ब्रेस को देखिए, मत्ती 24:24 झूठे मसीह झूठे अभिषेक चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखाते हैं कि चुने हुओं को भरमाए। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, वैसे ही ये दुराचारी विश्वास के विषय में निकम्मे विचार, कोई विश्वास नहीं, विशेष विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। जब तक आप एक प्रभु का विश्वास नहीं करेंगे तो एक विश्वास कैसे हो सकता है? आप एक पिता के लिए और एक पुत्र पवित्र आत्मा के लिए दो बपतिस्मा नहीं ले सकते, एक ही बपतिस्मा यीशु मसीह का, ये सही है, झूठे बपतिस्मे, समझे? जब आप घर जाएं तो आप इसकी आपस में तुलना करें। ध्यान दें, मत्ती 24:24 में यीशु बोल रहा है, पौलुस 2 तिमोथियस 3:8 और बहुत से, और इनकी तुलना करें, और तब लूका 17:30, मलाकी 4, जिस प्रकार यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया उस समय के अभिषिक्त वचन का, इसी प्रकार ये लोग भी जो अभिषिक्त हैं सत्य का विरोध करेंगे। उसी समय में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, प्रकाशित वाक्य 10:1-7, जब आप घर पहुँचे तो इसे पढ़ें। सातवें संदेश का दूत इन मोहरों को खोलेगा, ये क्या है? दूत मनुष्य का पुत्र नहीं है, परंतु दूत मनुष्य के पुत्र को प्रकट करेगा। क्या आप इसको अलग अलग समझ पा रहे हैं? अब ये आपके लिए कुछ कठिन सा प्रतीत हो रहा है, समझे आप? मनुष्य का पुत्र स्वयं नहीं, परंतु सातवां दूत सातवां संदेश वाहक लोगों में मनुष्य के पुत्र को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो आप भूसी से अलग हो रहा है, वो उसे संस्थाई नहीं बना सकते, वो तो अब फिर से बीज बन गया है। और उस दिन यन्नेस और यम्ब्रेस उस अभिषेक के विरोध में खड़े होंगे, बनावटी विश्वास और अविश्वासी नाम की कलीसिया और पेंटिकॉस्टल सच्चे बीज के विरोध में खड़े होते हैं, परंतु उन्हें रहने दें, उनकी अज्ञानता जैसे पहले प्रकट हुई थी फिर प्रकट हो जाएगी। देखा, अब आप समझे? प्रकाशित वाक्य 10 कहता है सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में। अब याद रखें, सातवीं लौदीकिया कलीसियाई युग उस दूत के शब्द देने के दिनों में, जब कलीसियाई युग संगठित हो चुकी है और कलीसियाई युग में बदल गई है, और जब ये पेंटिकॉस्टल संस्थाओं में भी हो चुकेगा, जब दूत वहाँ, प्रत्येक दूत क्या था? मार्टिन लूथर क्या था? कैथोलिक के लिए ताड़ना। वेस्ली क्या था? लूथरन के लिए ताड़ना। पेंटिकॉस्टल क्या था? औरों के लिए ताड़ना। अब जीवन कहाँ चला गया है? उन संस्थाओं से दूर चला गया है, अब छिलकों में नहीं है, अब वो बीज बन गया है। ये क्या है? पेंटिकॉस्टलों के लिए ताड़ना, ताकि इस समय का वचन पूरा किया जाए, समझे? उन दिनों को ध्यान दें, जब ये दूत, वो नहीं जब सेवकाई आरंभ हुई थी, परंतु जब वो अपना संदेश प्रचारित करना आरंभ करता है। देखिए, पहला खिंचाव चंगाई, दूसरा खिंचाव भविष्यवाणी, तीसरा खिंचाव वचन का खुलना और भेदों का प्रकट होना। भविष्य वक्ताओं से ऊपर कोई और वचन को नहीं खोल सकता, केवल वचन ही से भविष्य वक्ता प्रमाणित होता है। और याद रखें कि वो तीसरा खिंचाव सातों मोहरों का खुलना है, छिपे हुए सत्य को प्रकट करना जो कि वचन में छिपा हुआ था। और ये बातें उन दिनों में घटित होंगी जब यन्नेस और यम्ब्रेस नकल करने के लिए फिर से प्रकट होंगे, जैसा कि उन्होंने मूसा के प्रकट होने के समय नकल मारकर किया था। ये बिल्कुल सत्य है। अब आप देख रहे हैं कि मत्ती 24:24 क्या है। देखिए, अभिषिक्त लोग, समाप्त करने से पहले तीन बातों को कहूंगा, वो ये हैं। जब हम समाप्त कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुने, तीन बातें याद रखें, तीन बातें पूरी हो चुकी हैं, तीनों बातें आपके सामने हैं। पहली, संसार साधों की दशा में है, यीशु ने कहा ऐसा ही होगा। हम अपनी स्त्रियों की भ्रष्टता को देखें, कि स्त्रियां पुरुषों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती हैं, और पुरुष स्त्रियों की तरह। भ्रष्ट, नीच, गिरे हुए, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त और नहीं जानते। बाइबल कहती है ऐसा होगा, ये वैसा ही हो रहा है। दूसरा वचन के अनुसार ये वो समय है कि यन्नेस और यम्ब्रेस प्रकट होंगे। दूसरा तीसरा यही वो समय है कि जबकि मनुष्य का पुत्र प्रकट होना है। यहाँ आपके विश्वासी, आपके बनावटी विश्वासी और अविश्वासी। अब यहाँ सच्चा वचन जो प्रमाणित है सामने है और बनावटी विश्वासी इसकी नकल कर रहे हैं और अविश्वासी सारी बातों को नकार रहे हैं। परंतु सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आप अवश्य पाएंगे। ये सही है, राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है। वो चिन्ह जो हमारी बाइबल ने बताया और अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, साधु उनमें भय समाया हुआ है। वो पिछड़े हुए अपनों में वापस आ जाओ, छुटकारे का दिन समीप है। भय से मनुष्यों के हृदय व्याकुल हैं। अपने चिरागों को ठीक करके परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ ताकि तुम समय के वचन को देख सको। झूठे भविष्यवक्ता झूठ बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि वो अभिषेक यहाँ है। परमेश्वर के सत्य को वो नकार रहे हैं कि यीशु जो मसीह है हमारा परमेश्वर है। वे इसका विश्वास नहीं करते। बाइबल कहती है वो चीज यहाँ होगी और वो यहाँ है। हम वहीं चलेंगे जहाँ प्रेरित चले थे, उसी ज्योति में, और पूर्वजों के विश्वास को बालकों की ओर फेरेगा। छुटकारे का समय बहुत ही पास है, इतना पास कि मनुष्यों का हृदय भय से व्याप्त है। पृथ्वी नाश हो रही है। वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, अपने चिरागों को ठीक कर लो, साफ कर लो, ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा समीप है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। वहाँ बाहर देशों में जहाँ संदेश पूर्वी किनारे से पश्चिमी तक, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक, नीचे दक्षिण से ऊपर उत्तर तक, बाहर मिशनों और जहाँ कहीं भी ये जा रहा हो, और इस आराधनालय में हम निर्धन हैं। हमारे पास वो बड़ी अच्छी वस्तुएं नहीं है और टेलीविजन प्रसारण नहीं है। जितना हमसे अच्छा हो सकता है हम करते हैं, परंतु जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो आएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें, और आप जो टेप सुन रहे हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं ये सब कुछ अपने विषय में कहने का यत्न कर रहा हूं, क्योंकि ये संदेश मेरे पास है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं एक आवाज से अधिक और कुछ नहीं, मेरी ही आवाज मेरे न्याय के लिए बहुत है। मैं तो एक जानवरों का पकड़ने वाला बनना चाहता था, परंतु ये तो मेरे पिता की इच्छा है कि मुझे ये प्रचार करना है, और मैं इस पर डटा हुआ हूँ। वो जो वहाँ नदी पर प्रकट हुआ था वो मैं नहीं था, मैं तो केवल वहाँ खड़ा हुआ था जब वो प्रकट हुआ। मैं वो नहीं हूँ जो इन कामों को करता हूँ और इन बातों को पहले से बताता हूँ और वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं। मैं तो केवल जब वो करता है तो पास में खड़ा रहता हूँ। मैं तो केवल एक आवाज हूँ जिसको वो बोलने के लिए प्रयोग करता है। मैं वो नहीं जो ये सब जानता था। मैं तो केवल अपने को समर्पित करता हूँ कि जिसके द्वारा वो बोले। वो मैं नहीं था, वो सातवां दूत नहीं था। ओ नहीं, ये तो मनुष्य के पुत्र का प्रकटीकरण था। ये वो दूत और उसका संदेश नहीं था या भेद था जो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। ये मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। स्वर्गदूत मनुष्य का पुत्र नहीं था, वो मनुष्य के पुत्र की ओर से दूत था। मनुष्य का पुत्र मसीह है, वो ही है जो आपको भोजन खिला रहा है। आप मनुष्य की चरवाई में नहीं है। मनुष्य और उसके वचन असफल हो जाएंगे, परंतु आपको अचूक मनुष्य के पुत्र का देह वचन खिलाया जा रहा है। यदि आपको हर वचन पूर्ण रूप से नहीं खिलाया गया, ताकि आपको इन संगठनों और संसार की वस्तुओं से ऊपर उठने की सामर्थ्य मिले, तो क्या आप इस बार करेंगे जब हम प्रार्थना करते हैं? प्रिय पिता, ये बहुत कठिन बात है। ये मरणहार मनुष्य के लिए ये करना सरल नहीं। तू सारी बातें जानता है। और प्रिय परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इसे गलत ना समझा जाए, परंतु तेरे वचन की ज्योति में लोग चल सकें। और पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि कौन चुना हुआ है, तू जानता है। मैं नहीं जानता कि तेरा आना कब है, पर मैं ये जानता हूँ कि तूने कहा है, जब ये बातें होंगी तो ये झूठे अभिषिक्त होंगे। उसी समय से नहीं जब से ये आरंभ हुए, मूसा ने उनकी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वो इस विषय में कुछ और नहीं कर सकता था। वो तो केवल वही कहता था जो आप कह रहे थे। तूने उससे कुटिया बुलाने को कहा, तब उन्होंने बुला दी। आपने उससे कहा कि पानी को लहू में बदल दे, तो उन्होंने कर दिया। मूसा तो केवल शब्द शब्द वैसे ही चलाया जैसे आपने कहा। तब वो आप ही थे जिसने उनकी मूर्खता प्रकट कर दी। पिता, आप आज भी परमेश्वर हैं। उसी वचन ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, जैसा कि हमने पिछले रविवार कहा। उन्होंने अपना हाथ उस नई बैलगाड़ी के ऊपर वाचा के संदूक पर लगाया और लेवियों के कंधों को नहीं लगाया, और वो मरा हुआ गिरा, अपने पाप अपराधों में मरे और अपने विवेक के विरुद्ध वाद विवाद करते रहे। बहुत से प्रचारक अध्ययन के लिए बैठते हैं और उस वचन को पढ़ते हैं और जल्दी ही पन्ना पलट देते हैं, इस बात के धमाके से बचने के लिए। ये जानते हैं कि वो समाज में, कलीसिया में, संगठन में अपना सम्मान खो बैठेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम ऐसा कभी न करें। प्रभु, जगत की सारी गंदगी से हमारे हृदय को शुद्ध रखें। प्रभु, मैं शुद्ध होने के लिए तैयार हूँ। मैं इस कलीसिया और जो इसे सुन रहे हैं और जो भी इस टेप को सुनेगा, उनके साथ मैं तैयार हूँ। प्रभु, मैं खड़ा होता हूँ और आपसे शुद्धता के लिए निवेदन करता हूँ। प्रभु, मुझे कुम्हार के घर ले जा और मुझे तोड़ दे और अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अपना सेवक बना ले, क्योंकि प्रभु यीशु, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, जैसे कि यशायाह गिड़गिड़ाया कि मैं तो अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, और मुझ पर हाय, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रकाशन को प्रकट होते हुए देख रहा हूँ, जैसे कि यशायाह ने स्वर्गदूत को मंदिर में देखा। प्रभु, मैं अंत समय को देखता हूँ और मुझ पर, मेरे परिवार और मेरे लोगों पर हाय। ओ अनंत परमेश्वर, हम पर दया कर। मैं अपने लोगों के लिए निवेदन करता हूँ, हमें उन अविश्वासियों के साथ नाश न होने दे, परंतु हो सके तो हमें विश्वासियों के संग जीवित रहे। प्रभु, हर संगठन, हर पुरुष या स्त्री, मैं आपसे उनके संगठनों के लिए आशीष नहीं मांगता, जबकि मैं जानता हूँ आप उनके विरुद्ध हैं, परंतु प्रभु, मैं केवल इतना कह सकता हूँ, यदि आपकी कोई भेड़ उनके बीच में हो तो वो इस टेप को सुन सके। प्रभु, वे इसे सुन सकें और उस समझ से जो आप उन्हें दें समझ सकें, और वे बाहर आकर आपको ग्रहण कर सकें। वे इन दिनों की रीति रिवाजों से अंधे होकर धोखा न खा सकें। वे किसी पुराने दिन की लोथ को खाने का प्रयत्न न करें, ऐसा हो कि वो वचन ग्रहण करें। प्रभु, इसी प्रकार से फरीसियों ने आपको क्रूस पर चढ़ाया, वे मूसा की समय की लोथ को खा रहे थे और उसी की ओर ताकते रहने का यत्न कर रहे थे, जबकि तू उन्हें जंगल में ताजे मन्ने की छाया के रूप में दिखा चुका था। हर रात का अर्थ हर पीढ़ी, यही वे असफल रहे। इसने उन्हें विषायुक्त कर दिया, उस सड़े हुए भोजन ने उन्हें मार डाला, और आज आत्मिक रीति पर उसी प्रकार होता है, संगठनों में आत्मिक रीति से मर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर, हमारी सहायता करें। अब ये सब आपके हाथों में है, यीशु मसीह के नाम में हम अपने सिरों को झुकाए हुए अपना निर्णय लें, जबकि हम एक गीत गाने जा रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे? मैं अपने बचाने वाले की आवाज़ सुन सकता हूँ, और वो वचन है, मैं सुन सकता हूँ। ओ, मैं तो लंबे समय से भटकता रहा, परंतु अब मैं सच में उसकी आवाज़ सुनता हूँ। तुम जो इधर उधर टटोलते फिर रहे हो, सब मेरे पास आओ। सुनो, अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ प्रतिदिन चलो। जी हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, मुझे किसी का भय ना होगा। वहाँ वो मुझे हरी भरी चराइयों में और झरने के पास ले जाता है, और जहाँ वो मुझे ले चलता है, मैं, प्रभु, मैं त्रियकता की मूर्खता को देखता हूँ। मैं देखता हूँ संपूर्ण जगत इसमें पड़ा हुआ है, चारों ओर झाड़ियाँ उग रही हैं, परंतु अब आप जहाँ भी मुझे ले चले, प्रभु, मैं प्रेरित 19 के उन लोगों के समान होऊंगा। जब उन्होंने ये सुना तो यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लिया। प्रभु मैं आपको पाने के लिए आधे रास्ते तक चला। अब मैं उसके साथ साथ सारे रास्ते भर चलूंगा। प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरे हृदय से आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने यहाँ गाना गा रहे हैं, ये इस समय सब हृदय से निकल रहा है। हो सकता है जितने इस टेप को सुनेंगे, जो इस समय यहाँ ना हो या अभी ना सुन रहे हो, चाहे जो भी कीमत हो, प्रभु हम चाहेंगे जैसा कि वो व्यक्ति जो दूसरे की सेना से लड़ने जा रहा है, एक सिपाही, एक राजा, पहले वो ये परखता है कि ये इस योग्य है कि नहीं। क्या वो संसार की वस्तुओं को छोड़ सकता है? क्या आप छोड़ सकते हैं? परमेश्वर की लिखित वचन की सेना में शामिल हो जाइए, उसके सिपाहियों के साथ चलिए, उसके उकाबों के साथ उड़िए। प्रभु इसे यीशु के नाम में ग्रहण करें। आप विश्वास करते हैं? आप उसे ग्रहण करते हैं? ठीक है, हम आपसे आज रात फिर मिलेंगे, प्रभु ने चाहा तो। क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सत्य है? क्या ये स्पष्ट है? अब जो आपके पास हो उससे हाथ मिलाएं। मैं सोचता हूं कि सभी प्रचारकों को आज प्रातः ये मालूम हो गया होगा और पहचान चुके होंगे, जब कोई व्यक्ति पूरे सप्ताह प्रार्थना में लगा रहा और ये वचन आपके सामने स्पष्ट खड़ा हो, पौलुस ने कहा, मुझ पर हाय यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। जीवन के अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें परमेश्वर की पूरी मनसा बताने से ना झिझका जैसा कि मुझे सौंपा गया। कभी कभी मैं बहुत सी बातें भूल जाता हूं कि उन चीजों पर ध्यान दूं। बच्चों को प्रभु के सामने समर्पण करना है। बिली ने मुझे उस दिन बताया कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पिछले 2 वर्ष से अपने बच्चे के समर्पण के लिए आ रहा हूँ। बिली ने कहा, पूरा मत मानना, मेरा भी 1 वर्ष का बच्चा है और उन्होंने अभी तक उसे समर्पित नहीं किया है, इसलिए मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तक वो बड़ा होकर स्वयं चलकर आएगा, मुझे लगता है। इसलिए भाई बहनों, हम देखते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात कि हमें अपने बच्चों को समर्पण करना चाहिए। हमें हरेक को बपतिस्मा देना चाहिए। यहाँ तालाब और पानी है, यदि अब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या रोक रहा है? यहाँ पानी है, अभी आइए, रात की प्रतीक्षा न कीजिए, अभी आइए। यहाँ व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है, किसी को भी जिसने प्रायश्चित किया है बपतिस्मा देगा। यदि आपने 1 दर्जन भाग बपतिस्मे लिए हो, ये आपको प्रभु यीशु के नाम में पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा देगा, समझे? हमारे पास ये है, परंतु देखिए संदेश मेरे हृदय में है और मुझे इसे बताना ही है, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसकी चिंता नहीं कि मेरी पत्नी क्या कहती है, मेरे बच्चे क्या कहते हैं, मेरा पास्टर क्या कहता है, मेरा कोई भी कुछ कहे, ये तो प्रभु का संदेश है, मुझे ये प्रचार करना ही है, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और अब कितनी ही बार मैं प्रचारकों को सम्मानित करना भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ हमारे भाई नेविल, एक कीमती व्यक्ति, ये दूसरे भाई जो यहाँ है, आपके यहाँ होने से हमें प्रसन्नता है। ऐसा नहीं कि हम आपसे असहमत हैं जो दूसरे भाई हैं। आप में यहाँ बहुत से त्रिएकता के प्रचारक हैं। हम आपसे क्रोधित नहीं, हम आपको प्रेम करते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया, यदि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता, तो मैं इस आराधनालय को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं घुटनों पर पड़ा रहकर ये ना कहूँ, परमेश्वर मुझे ठीक कर। मैं उस घमंडी स्वार्थी आत्मा को अपने में आने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा शुद्ध और साफ हो, भाईचारे की प्रीति, पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा से है। अब यदि मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है तो ठीक है, और यद्यपि मुझे अधिकार है कि मैं उसका आमना सामना करूं, पर मैं अपने जीवन में ये नहीं करना चाहता। नहीं, मैं तो केवल प्रेम चाहता हूं। मैं प्रेम के साथ हमेशा ठीक होने के लिए तैयार हूं, उस प्रेम से जो सामने ही सिद्ध उत्तर देता है। मेरा अर्थ किसी के विरोध से नहीं है, चाहे आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन जो भी हो, मैं ये बातें आपसे विरोध में या घमंड में नहीं करता हूं। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं एक पाखंडी हूं, और मुझे यहां ऑल्टर पर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु मैं ये सब बातें इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और देखता हूं कि आप कहां जा रहे हैं। अब मैं ये अपने से नहीं कहता हूं, और मुझे लगता है इसलिए कहता हूं, मैं आपसे यहोवा यूं कहता है, कहता हूं ये सत्य है, और इन बातों के लिए मैं आपसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जब इस गीत का दूसरा पद गाते हैं, आइए इससे पहले कि हम जाएं, हम चाहते हैं कि आज रात आप यहां हों, यदि हो सकता है तो, यदि नहीं तो जब तक हम मिले परमेश्वर आपके साथ हो। हम केवल प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको अपनी सबसे अच्छी भूमि देगा, समझे। यीशु नाम को साथ लें।